मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शायद ये इकबाल की अहम तरीन नज़मों में से एक नज़म है। कैपिटलिज्म के अंदर जो है वो लस्ट और ग्रीड जो है वो बिज़नेस के स्कोप को और बिज़नेस के नेचर को डिफ़ाइन करते हैं। सवाल का लहजा ये बता रहा है कि सवाल कुछ ख़तरनाक है, क्योंकि इजाज़त वगैरह मांग के सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात अगर मुझको इजाज़त हो तो पूछूं, तो हम इजाज़त लेके सवाल उस वक्त करते हैं जब सवाल में गड़बड़ ज़्यादा हो। मशीयत का एजेंडा और इंसान के करने का काम दो अलग चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नशिस्त का उनवान है लेनिन खुदा के हुजूर में। इसका फॉर्मेट ये है, आज जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं बाले जिब्रील की नज़म है लेनिन खुदा के हुजूर में। 1935 में बाले जिब्रील शाया हुई, और जिस हिस्से में बाले जिब्रील के ये नज़म मौजूद है उससे पहले इकबाल का सफ़र उंदलस, उससे मुतालिका कुछ नज़में मौजूद हैं, और इससे बिल्कुल पहले जो नज़म है वो तारिक़ की दुआ है, और उसके बाद फिर ये तीन नज़में हैं। असल में लेनिन खुदा के हुजूर में एक नज़म है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये नज़मों का एक सिलसिला है, तीन नज़मों का एक सिलसिला है, बात इन तीनों नज़मों को पढ़ने के बाद मुकम्मल होती है। यानी लेनिन खुदा के हुजूर में ये यहाँ से बात शुरू हुई है, और उसके बाद इसके फौरन बात है फ़रिश्तों का गीत, और उसके बाद जो तीसरी नज़म है फरमाने खुदा फरिश्तों से। तो ये तीन नज़में हैं जो मैं इन्हें कहता हूँ ये सीक्वल है, और इन तीनों नज़मों के सिलसिले में एक बात, एक बयानिया मुकम्मल होता है, एक बात मुकम्मल होती है। तो हम अभी क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वो पस मंज़र जानना ज़रूरी है, वो क्या पस मंज़र है जिसमें ये नज़म पैदा हुई है, जिसमें ये नज़म तख्लीक हुई है, उसका थोड़ा सा एक तस्करा मैं करने की कोशिश करूँगा। लेनिन के बारे में हम सब ने कुछ ना कुछ सुन रखा है, तो लेनिन के बारे में ज़रा सा हम रिकॉल करेंगे कि लेनिन की शख्सियत क्या है, लेनिन का मुकाम क्या है, और वो तारीख़ी कह लीजिए पस मंज़र हम पहले देखेंगे, फिर लेनिन की शख्सियत को देखेंगे, और उसके बाद फिर हम ये नज़म पढ़ेंगे। आप में से किस किस ने मर्चेंट ऑफ वीनस पढ़ा है या देखा है? देखिए, मर्चेंट ऑफ वीनस जिस अहद में लिखा गया, ख़्याल है कि 1596 से 1599 के बीच में ये नावल लिखा गया है, और इसमें जो बात, इसमें क्या अहम बात आपको नज़र आती है? ग्रीड नज़र आती है। माल जो है वो इंसान से अहम है, और एक रिवायत जो है वो दम तोड़ रही है, और एक रिवायत जो है वो पैदा हो रही है। यानी दो रिवायतें, या कह लीजिए दो रुझानात किसी सोसाइटी में मौजूद थे। एक रुझान ये था कि दोस्त की मोहब्बत में अपने नुकसान की परवाह किए बगैर, अपने मुस्तकबिल के खौफ को खातिर में लाए बग़ैर, मोहब्बत की खातिर जो है, यानी दोस्त की मोहब्बत की खातिर आप उसको कुछ देते हैं, एक सेल्फलेसनेस का उसमें एक रुझान उसमें सेल्फलेसनेस का है, मोहब्बत का है, इसको आप इश्क कह लें, इसको मोहब्बत कह लें। दूसरा रुझान जो है जिसमें ग्रीड है, जिसमें एक सफाकी है, जिसमें एक कह लीजिए इंसान से ज़्यादा माल अहम है, और इंसान के मुकाम को उसकी माली पोजीशन को सामने रखते हुए देखना है, ये एक दूसरा रुझान है ना। ये दो रुझानात आपको मर्चेंट ऑफ वीनस में नज़र आते हैं। जिस ज़माने में मर्चेंट ऑफ वीनस लिखा गया, बात यह है कि ये जो शायर होता है, या ये जो बड़ा मुसन्निफ़ होता है, या जो बड़ा कह लीजिए ड्रामा निगार होता है, या बड़ा आर्टिस्ट होता है, उसका तख़य्युल जो है वो मुस्तकबिल के वो रुझानात जो अभी, जिनका बीज सोसाइटी ने कबूल कर लिया है, वो जब दरख्त बनेगा उसको देख सकने की काबिलियत उनके अंदर मौजूद होती है। वो 100, 150, 200 साल आगे झांकना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होती, और ये काम पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये काम बहुत दफ़ा हुआ। ये काम इकबाल के यहाँ भी हो रहा है, ये काम इकबाल से पहले भी हो रहा है, ये काम और पहले भी हो रहा है, कि जो बड़ा अदब होता है उसके अंदर एक पेशबीनी का एक कह लीजिए मौजज़ा उसके अंदर नज़र आता है, यानी पेशबीनी के मौजज़ात उसके अंदर भरे हुए होते हैं बड़े अदब के अंदर। यह आपको शेक्सपियर के यहाँ भी मिलेगा, यह आपको दूसरे लोगों के यहाँ भी मिलेगा। जिस ज़माने में मर्चेंट ऑफ वीनस लिखा गया, ये वही दौर है जब कैपिटलिज़म जो है वो अपनी कह लीजिए एक बनने के अमल में था, कैपिटलिज़म इवॉल्व हो रहा था। और कैपिटलिज़म क्या है, मेरा ख़्याल है कि आप सब लोग इसको कुछ ना कुछ तो इसके बारे में जानते ही होंगे, कोई सरमायदाराना निज़ाम जिसे हम कहते हैं। मग़रिब ने जो तरक्की की है वो इनकार खुदा के माहौल में की है, और मग़रिब की और स्पेशली मग़रिब से मुराद मेरा यूरोप है, जो मग़रबी यूरोप है, और वहाँ पर साइंस को एक उरूज हासिल हुआ, वहाँ पर इंडस्ट्री को उरूज हासिल हुआ, वहाँ पर दूसरे फ़नून को उरूज हासिल हुआ, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। वहाँ पर हमें एक एज ऑफ इनलाइटनमेंट नज़र आती है, उसके बाद की फिर एक और दौर नज़र आता है, वहाँ हमें माशी तरक्की नज़र आती है। तो ये जो वैसे तो उसूली तौर पर जो कैपिटलिज़म है और मॉडर्निज़म है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये अलग अलग पूरे नोशंस हैं, लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं तो इन सब की एक दूसरे के ऊपर एक इंटरडिपेंडेंस पैदा हुई है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि कैपिटलिज़म पैदा हुआ 16वीं सदी और 17वीं सदी के अंदर, और उसके बाद आगे बढ़ी है दुनिया, और फिर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, और उसके बाद फिर कैपिटलिज़म और इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ ऐसा समझौता कर लेते हैं, और फिर कैपिटलिज़म के ऊपर एक तनकीद पैदा होती है। कैपिटलिज़म के ऊपर सबसे बड़ी तनकीद जो है वो जिस शख्सियत ने की, जो कि अपने ऐद की बहुत बड़ी तनकीद है, जिसको हम कार्ल मार्क्स के नाम से जानते हैं, और ये कार्ल मार्क्स का दौर है 19वीं सेंचुरी का। इसके बारे में तमाम लोग मुत्तफिक हैं कि शायद 19वीं सेंचुरी में इससे बड़ा फ़लसफ़ी नहीं पैदा हुआ, जिसने अपने अहद का एक ऐसा कि अपने अहद के वो तस्लीम शुदा कह लीजिए मॉडल्स, यानी वो मॉडल्स जो उस अहद में जिसके बारे में कोई सवाल उठाने की काबिलियत नहीं थी किसी के अंदर, उसने उस मॉडल के ऊपर न सिर्फ ये कि सवाल उठाए हैं, उसके ऊपर उसके एक ऐसा नुक्ता नज़र पेश किया जिसके नतीजे में फिर कई रेवोल्यूशंस उसके नतीजे में पैदा हुए। यानी लेनिन और मार्क्स का एक फ़िक्री ताल्लुक़ है। मार्क्स 19वीं सदी के एक बहुत बड़े फ़लसफ़ी हैं, लेनिन 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरू में। लेनिन की मुख्तसर ज़्यादा उम्र लेनिन की नहीं है, लेकिन लेनिन जो है वो बुनियादी तौर पर एक बड़े इनकलाबी हैं। तो कार्ल मार्क्स ने एक तसव्वुर पेश किया, उस तसव्वुर की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में लेनिन ने जिस तरह ज़रूरी समझा उसको उन्होंने अपने मारूजी हालात में उसको रीएडजस्ट किया। उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म थी उससे बहुत हद तक उसमें एक तब्दीली आई। यानी मिसाल के तौर पर अब हम एक लेनिनिज़म भी, एक जैसे मार्क्सिज़म एक तसव्वुर है वैसे लेनिनिज़म भी एक तसव्वुर है, लेकिन लेनिनिज़म जो है वो लेनिन ने मार्क्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको जब इम्प्लीमेंट किया तो वो जिस शक्ल में इम्प्लीमेंट हुआ तो वो लेनिन का फिर पूरा पर्सपेक्टिव कहलाया। तो कैपिटलिज़म क्या है, और क्या कैपिटलिज़म और वेल्थ और कैपिटल क्या एक चीज़ है? मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि हम ये बात समझें कि वेल्थ और कैपिटल एक चीज़ नहीं है। कैपिटल वेल्थ को नहीं कहते, बल्कि कैपिटल वेल्थ की एक वो शक्ल जो, यानी जब हम वेल्थ को एक ख़ास जज्बे और एक ख़ास मकसद के साथ उसमें मुसलसल इजाफे के लिए एक एक वेल्थ को एक ऐसे प्रोसेस में फेंकते हैं या एक ऐसे प्रोसेस में डालते हैं जिससे वेल्थ में मुसलसल इजाफा होता रहे और वेल्थ में इजाफे की एक यकीनी सूरत पैदा हो जाए, और उसके ऊपर हमारी सारी इनर्जीज और सारे हम फिर प्रोसेसेस ऐसे बनाएं जो कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को और उस वेल्थ के इजाफे को यकीनी बनाएं, तो इस पूरे तसव्वुर को हम कहते हैं कैपिटल। यानी वेल्थ और कैपिटल में फ़र्क है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले भी कैपिटलिज्म एग्जिस्ट करता था। एक अगर मैं ये कहूँ कि जो ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म है उसकी जो शक्ल थी वो सूद की शक्ल थी, जब आप किसी को कर्ज़ा देते थे और सूद लेते थे, ये कैपिटलिज्म की सबसे पुरानी, ये वो उस अहद की बात है जब कैपिटलिज्म का लफ्ज़ ईजाद नहीं हुआ था, या जब हम इसे कैपिटलिज्म के नाम से नहीं जानते थे, लेकिन वो भी एक सरमायदारा, जिसे हम उर्दू में कहते हैं सरमायदार, सरमायदाराना निज़ाम या सरमायादारी, तो वो भी एक इसी जज्बे के साथ थी कि मेरा जो पैसा है, मेरा जो माल है, वो उसमें इजाफा मुस्तकिल होना चाहिए, और माल में इजाफे की ख्वाहिश जो है वो देखिए, ट्रेडिशनल सोसाइटी में जब बिजनेसेस होते थे तो नीड, जो हमारी नीड है वो डिफाइन करती थी कि बिजनेसेस के स्कोप कैसे होंगे, यानी इंसानी इंसानी माशरे की ज़रूरत और इंसानी माशरे की अकदार, ये किसी भी बिजनेस के स्कोप और किसी भी बिजनेस के नेचर को गवर्न करते थे। लेकिन कैपिटलिज्म के अंदर जो है वो लस्ट और ग्रीड जो है वो बिजनेस के स्कोप को और बिजनेस के नेचर को डिफाइन करते हैं, ये बुनियादी फ़र्क है। लेकिन रिवायती माशरों के अंदर भी, यानी रिवायती माशरों से मुराद है मेरी, यानी आप समझिए कि 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि 16वीं सदी से पहले के जितने माशरे हैं, 17वीं सदी से पहले के जितने माशरे हैं, उनमें भी कैपिटलिज्म की एक रमक नज़र आती है, और वो सूद की शक्ल में नज़र आती है। लेकिन उसके बाद फिर कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म इवॉल्व हुआ है, कैपिटलिज्म खुद यानी कैपिटलिज्म अपनी सफाकी में और अपनी कामयाबी में और अपनी इफ़ेक्टिवनेस में विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव हुआ है। और जो उसके ऊपर सबसे बड़ी तनकीद, जो जिसे हम कार्ल मार्क्स ने की और कार्ल मार्क्स के साथियों ने की, उसके नतीजे में कैपिटलिज्म में करेक्शंस हुई हैं, कैपिटलिज्म के अंदर रिफाइनमेंट हुई है, कैपिटलिज्म में और मॉडिफिकेशंस हुई हैं, और अब जो कैपिटलिज्म की जो मौजूदा शक्ल है वो कैपिटलिज्म की अर्ली शक्ल से बहुत मुख्तलिफ है। तो लेकिन जहाँ मैंने ये बात की कि कैपिटलिज्म जो है उसमें वेल्थ और कैपिटल का जो फ़र्क मैंने बयान किया, एक एक दो चीज़ें और हम बैकग्राउंड में देख लेते हैं कि कैपिटलिज्म का राइज किस दौर में हुआ ना। देखिए, मैंने मेरे लिए जो सबसे अहम, जो तारीख़ का जो सबसे अहम टर्निंग पॉइंट है, वो मर्चेंट ऑफ वीनस को मैंने लगाया। मैं मेरे नज़दीक मर्चेंट ऑफ वीनस वो टाइम है जिसमें वो रुझानात, दो रुझानात सोसाइटी में उस वक्त तक एग्जिस्ट करते थे। एक बेलौसी और मोहब्बत और इश्क का रुझान था, जिसमें इंसान अपने इम्कानी नुकसान को खातिर में लाए बगैर किसी दोस्त के लिए कुछ भी करने पे और किसी भी लेवल पर कमिटमेंट करने पे तैयार था। ये रुझान आपको एंटोनियो में नज़र आता है। दूसरा रुझान जो शेक्सपियर का एक और कैरेक्टर है शाइलॉक, जिसके अंदर दूसरा रुझान नज़र आता है, जिसके अंदर वो एक सफाकी और खुदगर्जी और ग्रीड और एक हेट, और उसके अंदर और भी दूसरे मसाइल हैं, उसके अंदर दूसरी रूहानी बीमारियां भी उसके अंदर हैं। मिसाल के तौर पर हसद उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर नफ़रत बहुत ज़्यादा है, वो आपको नज़र आएगा उस पूरे कैरेक्टर के अंदर। तो ये वो पीरियड है जिसके अंदर हम और आगे बढ़ते हैं, एज ऑफ इनलाइटनमेंट आती है, और मज़हब का और मोनार्की का इकट्ठे इनकार यूरोप के अंदर होता है, और यूरोप के अंदर बड़े इनकलाब आते हैं, यूरोप के अंदर बहुत बड़ा इनकलाब आता है, और मोनार्की जिसे हम शहनशाहियत कहते हैं, और कलीसा जिसकी एक अच्छी खासी यानी जोर था, ये पूरा टूटता हुआ नज़र आता है। और उसके बाद फिर जो दूसरी बात नज़र आती है वो ये कि मैं आज़ाद हो गया हूँ, और मेरी अक़ल जो है, मेरी जो मंतिक है, मेरी जो एक एक रैशनैलिटी का एक 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 इरा पैदा होता है, जिसके अंदर हम एक चीज़ों को नए नए फ़लसफ़े पैदा होते हैं, नए नए ख्याल आते हैं, वो बहुत बड़ी, यानी एक बहुत बड़ी 18वीं सदी में, 19वीं सदी में ये फ़लासफ़ा का अहद है। इसमें बहुत बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स पैदा हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कह लीजिए थ्योरीज पेश की हैं, अपने पर्सपेक्टिव्स पेश किए हैं सोसाइटी से मुतालिक, दुनिया को जाना क्या कहाँ है, इंसान की नेचर से मुतालिक, उनके असरात अभी तक हमारे अहद पे हैं। तो इसी अहद में कैपिटलिज़म जो है वो आगे बढ़ता है, और 17वीं सदी के आखिर तक, जिसे हम आज नीदरलैंड कहते हैं या हॉलैंड कहते हैं, वो उस ज़माने में जिसे हम डच कहते थे, वो पहला कैपिटलिस्ट, एक एक्सप्लिसिट कैपिटलिस्ट स्टेट के तौर पर इमर्ज होता है। और उसके बाद फिर लंदन जो है वो कैपिटलिज़म का हब बनता है, वहाँ पर इंडस्ट्री, अच्छा मैं जैसे मैंने शुरू में कहा कि कैपिटलिज़म और इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनी इब्तदा में एक चीज़ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े हैं तो इन दोनों के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त इंटरडिपेंडेंस, आज का जो कैपिटलिज्म है उसकी इंडस्ट्री के साथ एक बड़ी गहरी इंटरडिपेंडेंस वाबस्ता हो चुकी है, लेकिन वो अपनी इब्तदा में ऐसा नहीं था। तो उसके बाद कैपिटलिज्म जो है, जिसे हम सरमायदाराना निज़ाम कहते हैं, वो फिर बरतानिया उसके अंदर एक बहुत बड़ा उसका एक मरकज़ बनता है, और फिर वहाँ से वो फिर अमेरिका में जाता है और फिर पूरे यूरोप के अंदर वो फैल जाता है। शुरू में ये जो कैपिटलिज्म था वो यूरोसेंट्रिक था, और उसके बाद फिर वो अब जो है वो फैलता चला गया और पूरी दुनिया में उसके असरात हैं। यही 19वीं सदी है जिसके अंदर उसके ऊपर बहुत बड़ी तनकीद, यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसे हो सकता है कि आपने सुना हो, वो लिखा जाता है उसके ऊपर। यानी 19वीं सदी में अमीर बहुत अमीर होता जा रहा था, गरीब बहुत गरीब होता जा रहा था, ये दो क्लासेस एग्जिस्ट करती थी। इस्तेहसाल, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने चार्ल्स डिकेंस को पढ़ा है, आपने विलियम ब्लेक को अगर पढ़ा है, तो आपको पता लगेगा कि एक बहुत गहरा तंज और एक बहुत गहरी तनकीद अदब की दुनिया में एग्जिस्ट करती थी, और उसी के दौर में एक बड़ी गहरी पॉलिटिकल और जो जो आइडियोलॉजी है जो कि कैपिटलिज्म को चैलेंज करती है, वो पैदा हुई है। और वो कार्ल मार्क्स के कह लीजिए उसकी राइटिंग्स से पैदा हुई है। तो ये वो पस मंज़र है। कुछ चीज़ें और हुई हैं, मिसाल के तौर पर हमें नज़र आता है एडम स्मिथ, 18वीं सदी के आखिर में एडम स्मिथ एक किताब लिखते हैं जिसमें वो जो वो सारे वर्चूज़ जो कैपिटलिज्म के साथ वाबस्ता किए जा सकते हैं वो उसको बताते हैं। वो बताते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो कितनी मुफीद चीज़ हो सकता है। यानी अब देखिए, कार्ल मार्क्स से पहले ये एडम स्मिथ ये किताब लिख चुके हैं, और ये किताब अपनी कहा जाता है कि यूरोप के अंदर इस जो रिकॉर्ड इशाअत और जितनी सेल इस किताब की हुई, उससे पहले कम ही किसी किताब को इतनी मकबूलियत मिली होगी। और वो बहुत मशहूर मिसाल एडम स्मिथ ने अपनी किताब में दी कि अगर एक मज़दूर एक दिन में 10 पिंस बनाते हैं, तो 10 मज़दूर या 20 पिंस बनाते हैं, तो 10 मज़दूर एक दिन में 200 पिंस नहीं बनाएंगे बल्कि 4800 पिंस बनाएंगे। और इसको हम यानी हम जो लेबर है, हम एक ऑर्गेनाइज्ड लेबर और एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेबर का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के उसूल उन्होंने बताए, उन्होंने कैपिटल की कैपिटल को कैसे बढ़ाना है उसके बहुत बहुत अहम उसूल उन्होंने बताए, जिसके ऊपर दुनिया अभी भी बड़ी कह लीजिए इखलास के साथ कारबंद है। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है। अब सवाल ये है कि इंसान को इंसान इस दुनिया में आया क्यों था, और उसके लिए ये जो माश जो था वो उसके लिए सबसे ज़िंदगी की सबसे अहम हकीकत उसकी माशी मसरूफियत या माशी जद्दोजहद या माश जो था या इकॉनमी जो थी, जो मईशत थी, वो किसी इंसान की सबसे अहम चीज़ कैसे बन गई थी। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ये जो सारी चीज़ें इमर्ज हुई, ये सारे जो नोशंस इमर्ज हुए, ये इनकारे खुदा के माहौल में इमर्ज हुए। और उस वक्त ज़िंदगी की मानवियत जो थी वो कैसे डिफ़ाइन होती है, ये कुछ वाज़े तौर पर समझ नहीं आ रहा था। बल्कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के अंदर देखें, कम्युनिज्म भी इनकार खुदा के माहौल में पैदा हुआ है और कैपिटलिज्म भी इनकार खुदा के माहौल में पैदा हुआ है। ये लिहाजा जो कम्युनिज्म ने जो कैपिटलिज्म को रद्द किया है, वो इसलिए रद्द नहीं किया कि कैपिटलिज्म जो है वो हमारी ज़िंदगी की मानवियत हमें नहीं दे पाता, बल्कि उसका बुनियादी एतराज़ ये है कि कैपिटलिज्म जो है वो दो तबकात पैदा करता है और उसके नतीजे में जो गुर्बत पैदा होती है। कैपिटलिज्म जो है वो एक फॉर्म ऑफ एक ऑर्गेनाइज्ड चैनल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, और इससे बाहर निकलने की एक सूरत है कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म का एक पूरी थ्योरी उसके नतीजे में आई। कम्युनिज्म अपनी असल शक्ल में शायद कहीं भी नज़र नहीं आया, वो सोशलिज्म की शक्ल में नज़र आया। तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म में कुछ फ़र्क भी है और कुछ कॉमन बात भी है। कॉमन बात यह है कि कम्युनिज्म को किसी स्टेट में, अच्छा कैपिटलिज्म के ऊपर सिर्फ कम्युनिज्म ही वाहिद क्रिटिक नहीं है, एक और भी कई और भी तनकीदें, यानी कई और तरह की फॉर्म्स ऑफ क्रिटिक्स भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई इसलिए कि उनके साथ कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल वाबस्ता नहीं हुई। कम्युनिज्म के साथ एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल वाबस्ता हुई, लिहाजा कम्युनिज्म जो है, यानी जब हम 20वीं सदी में दाखिल होते हैं तो 20वीं सदी का जो आगाज़ है उसमें दुनिया में बहुत बड़े बड़े कम्युनिस्ट ब्लॉक्स एग्जिस्ट करते थे। 20वीं सदी के वस्त तक दुनिया में बहुत बड़े बड़े कम्युनिस्ट ब्लॉक्स एग्जिस्ट करते थे। तो लेकिन जिसे हम कम्युनिस्ट ब्लॉक कहते हैं असल में वो सोशलिस्ट ब्लॉक्स थे, और एक टाइम वो आया जिसमें लोगों ने उससे भी लोग बेजार हो गए और उन्होंने कहा कि भाई ये भी एक तरह का, यानी एक जबर वो था जो कैपिटलिस्ट हमें हम पे करता था, और अब ये दूसरा जबर है जिसमें स्टेट हम पे जबर कर रही है। यानी एक मोनार्की का जबर था, एक इंडस्ट्री का या कैपिटलिज्म का जबर था, और अब ये एक और जबर है जिसमें स्टेट हम पर इतनी सख्ती लगाती है। तो वो भी ये एक अलग बहस है कि वो क्यों नाकाम हुआ या क्यों, या वो नाकाम हुआ या नहीं हुआ, ये एक अलग बहस है। चूँकि कैपिटलिज्म अभी पूरी दुनिया में पूरी माइट के साथ मौजूद है, लिहाजा हम ये यानी असरी पैमानों पे ये नहीं समझते कि कैपिटलिज्म नाकाम हुआ है, लेकिन बात यह है कि कैपिटलिज्म जो है उसने एक जुल्म का एक ऐसा ना रुकने वाला साइकिल इंट्रोड्यूस कर रखा है जिससे बाहर निकलना और जिससे बचना आज के लिए, आज के इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, तो कैपिटलिज्म जो है वो अभी पूरी दुनिया, अब तो पूरी दुनिया, कैपिटलिज्म अब सिर्फ वेस्ट का इशू नहीं है ना, कैपिटलिज्म तो अब पूरी दुनिया में है, अब ग्लोबल कैपिटलिज्म है। पहले ये यूरोसेंट्रिक कैपिटलिज्म था जिसमें नीदरलैंड जो था वो पहला मुल्क था जिसने एक्सप्लिसिटली ये कहा था कि हम कैपिटलिस्ट हैं। इस वक्त तो रशिया भी कैपिटलिज्म को एम्ब्रेस कर चुका है। इस वक्त हम इतनी ख़तरनाक दौर में हैं कि हम इस वक्त एक हम अननोइंगली कैपिटलिज्म को इस्लामाइज करने की कोशिशें कर रहे हैं। इस वक्त तो हम एक अलग अहद में एंटर हुए हैं जिसमें हम शरिया कंप्लाइंट कैपिटलिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हम जिस तरह चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि हम कैपिटलिज्म की बुनियाद को जानते नहीं हैं, यानी सरमाए से मोहब्बत, सरमाए में इजाफे की फ़िक्र, और फिर सिर्फ यही नहीं है बल्कि यह है कि उसके साथ और चीज़ें हैं, उसके साथ कंज्यूमरिज्म उसके साथ वाबस्ता है, उसके साथ जो है वो बहुत सारी और चीज़ें हैं जो उसके साथ वाबस्ता हैं, वो सब मिलती हैं। जो आज का जदीद कैपिटलिज्म है, जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है, वो ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म से बहुत मुख्तलिफ है। बल्कि एक एग्रीगेरियन कैपिटलिज्म होता था, उसके बाद एक इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म आया, उसके बाद एक मॉडर्न कैपिटलिज्म जो इस वक्त का कैपिटलिज्म है, और जो इस वक्त का मॉडर्न कैपिटलिज्म है उसके ऊपर सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बहुत गहरे असरात हैं, बहुत गहरे असरात हैं। बल्कि एक और फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है जिसको हम कहते हैं सोशल कैपिटलिज्म। तो सोशल कैपिटलिज्म वो है जिसके अंदर वेलफेयर स्टेट्स का तसव्वुर शामिल है, जिसके अंदर इंसान की जो है, यानी किसी सोसाइटी की हेल्थ, एजुकेशन और इसकी जिम्मेदारी जो है वो कैपिटलिज्म ने कबूल की है। बड़े कॉरपोरेट्स ने 1% वक्फ किया है अपने प्रॉफिट का CSR एक्टिविटीज़ के अंदर। बहुत एक ये सारे वो असरात हैं जो कम्युनिज्म, यानी होता ही है कि जब आप इल्मी तनकीद किसी भी मॉडल पे करते हैं, जो प्योर एकेडमिक क्रिटिक होती है, वो बहुत एहसान करती है आपके ऊपर। तो कैपिटलिज्म ने जो इतनी बड़ी तनकीद सही है, यानी सही है या झेली है, यानी इस वक्त, बल्कि इस वक्त का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, इस वक्त जो अमेरिकन यूथ है, अमेरिकन यूथ के जो जो पढ़ी लिखी अमेरिकन यूथ है उसके अगर 4-5 पसंदीदा तारीखी किरदार आप पूछें तो उनमें से एक कार्ल मार्क्स है। इस वक्त कार्ल मार्क्स दोबारा से ज़िंदा हो रहा है इस वक्त की जदीद दुनिया में। ये बड़ी अजीब सी बात मैं कह रहा हूँ, यानी उन्हें यानी ऐसा नहीं है कि उसका कोई बहुत बड़ा कोई कोई एसोसिएशन या कोई बहुत बड़ी इंगेजमेंट उन्होंने पैदा कर लिए, लेकिन वो एक लोग वापस पलट के उधर जा रहे हैं। जब जब वो जो कैपिटलिज्म से डसा हुआ माशरा है वो फिर तलाश करता है कि मैं कहाँ जाऊँ, और फिर वो देखता है कि इसके ऊपर सबसे बड़ी बड़ी क्रिटिक यहाँ हुई है, तो फिर वो उधर अपनी अपने परेशानी का इलाज वहाँ ढूंढने की कोशिश करता है। तो इस वक्त जो 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 मॉडर्न अमेरिकन यूथ है उसके लिए दो तीन नाम बहुत अहम हुए हैं, उनमें से एक रूमी का नाम बहुत अहम है, उसमें से एक कार्ल मार्क्स का नाम बहुत अहम है। और ये बड़ी हैरत की बात है कि इस वक्त उन्हें ये नाम ये शख्सियात कैसे उन्हें क्लिक कर रही हैं, कैसे उन्हें स्ट्राइक कर रही हैं। तो ये खैर मैं और आगे बढ़ता हूँ। मैं ये अच्छा लेनिन के बारे में भी कुछ थोड़ी सी बात हो जाए। लेनिन जो है वो 19वीं सदी के आखिर में कोई 1870 में लेनिन पैदा हुए और 1924 में, यानी तकरीबन 53 साल की उम्र थी जिसमें लेनिन का इंतकाल हो गया। और लेनिन जो है आपके इल्म में है कि रशिया के पहले, रशिया के फाउंडिंग फादर्स आप कह लें, रशिया के फाउंडर कह लें आप, रशिया के, और वो जो बहुत बड़ा जो रेवोल्यूशन यानी तारीख़ के अंदर एक बड़ा रेवोल्यूशन रशियन रेवोल्यूशन है, तो उसको उसका सहरा लेनिन के सर जाता है। और आप हो सकता है कि आप लेनिन के बहुत से लेनिन की स्ट्रैटेजी से लेनिन की पर्सपेक्टिव से मुमकिन है कि बहुत से लोग कुल्ली तौर पर इत्तफाक ना करें। आज के अहद में ऐसा आदमी ढूंढना बहुत मुश्किल है जो लेनिन से कुल्ली इत्तफाक करे, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि लेनिन से कुल्ली इत्तफाक करने वाले उसके साथियों में भी कम थे। यानी ये अजीब सी बात आपसे, जब आप इसकी तलाश में जाएंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन बात यह है कि ये इवॉल्व हुआ है, ये सारी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। लेनिन के बाद स्टालिन आए हैं, उन्होंने मज़ीद मतलब तब्दीलियाँ की हैं। यानी लेनिन और स्टालिन, यानी आप देखिए लेनिन जिसका पैरोकार है मार्क्स का, तो मार्क्स के पर्सपेक्टिव में और लेनिन के पर्सपेक्टिव में आपको फ़र्क महसूस होता है, ख़ासा फ़र्क महसूस होता है। और इस फ़र्क की बुनियाद पर बहुत से लोग उससे नाराज़ हुए। फिर लेनिन के बाद स्टालिन आते हैं, तो इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ये इवॉल्व हुआ है। और फिर उसके बाद चाइना में एक रेवोल्यूशन आता है, उसके बाद और जगहों पर रेवोल्यूशन आता है, क्यूबा में आता है, वेनेजुला में आता है। तो वो अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में वो एक कंटेक्सचुअल कह लीजिए मॉडिफिकेशंस जहाँ उन्होंने ज़रूरी समझी वो उसको करते हैं। तो लेनिन की ख़ास बात क्या है? लेनिन की सबसे अहम बात यह है कि लेनिन की जो स्ट्रगल है वो गैर मामूली है। लेनिन जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला और बहुत कमाल का लिखने वाला था। यानी लेनिन की, लेनिन बुनियादी तौर पर थिंकर नहीं है बल्कि रेवोल्यूशनरी है। बुनियादी तौर पर वो जिसे हम पक्का इनकलाबी जिसे हम कह सकते हैं ना, यानी अगर अगर ये कहा जाए कि इंसानी तारीख में मुकम्मल इनकलाबी कितने लोग होंगे, तो उसमें शायद मुकम्मल इनकलाबी का टाइटल शायद लेनिन के ऊपर सबसे ज़्यादा जचता है। मुकम्मल इनकलाबी का मतलब यह है कि जो बिल्कुल तलपट कर देने या पलट देने की काबिलियत रखे, जो एक्सेप्ट ना करे। और लेनिन ने कई ऐसे टर्निंग पॉइंट्स उसकी ज़िंदगी में आए जिसने जिसमें उसने अपने उसूल पे समझौता नहीं किया और उसके नतीजे में ज़्यादा मुश्किल रास्ता इख्तियार किया। यानी आसान रास्ता उसूल पे थोड़े से समझौते से मुमकिन था, उसने मुश्किल रास्ता उसूल पे समझौते के बग़ैर इख्तियार किया। ये लेनिन का कैरेक्टर है, ये लेनिन की कमिटमेंट है। तो लेनिन की फैमिली ने बहुत सेक्रीफाइस की उस रेवोल्यूशन के लिए। उसके भाई ने एक मोनार्की थी लेनिन रशिया के अंदर, उसको जब उसके ख़िलाफ़ एक बड़ी स्ट्रगल है तो किस तरह से वो ख़त्म हुई, उसमें उसके भाई लेनिन का कम उम्र थी उसी में ही उनका मर्डर हुआ। उसके बाद लेनिन ने एग्ज़ाइल देखा, लेनिन ने फिर एक बड़ी ज़बरदस्त एक अपने कलम से एक मूवमेंट शुरू की। और जिस ज़माने में लेनिन की राइटिंग्स आया करती थी रशिया में, और ये लेनिन रशिया से बाहर थे, तो वो स्मगल होती थी राइटिंग, और वो पीसेस में होती थी, और लोग फिर उन पीसेस को दोबारा जाके गैदर करके फिर उससे एक बात निकालते थे और वो हिला देती थी। मतलब लेनिन की कोई भी तहरीर, असल में अब ये बहुत अहम बात है कि उसका कलम और किताब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, तो उसको उसने इस्तेमाल किया। और पूरी फैमिली उसकी इस पूरे स्ट्रगल में उसके साथ रही। और हम देखते हैं कि वो जब रशिया आज़ाद होता है तो, या रशिया जब फॉर्म होता है, तो उस ये जो रेवोल्यूशन आता है, तो उसके बाद कुछ अरसे ही लेनिन ज़िंदा रहा। और बड़ा बहुत टर्मोइल का ज़माना था, बहुत क्योटिक पीरियड था, वर्ल्ड वॉर उस ज़माने में हो रही है जिस ज़माने में रशिया में रेवोल्यूशन आया है। तो लेनिन का एक कमाल ये था कि वो वर्ल्ड वॉर से रशिया को उसने बहुत कामयाब हिकमत अमली के साथ उसने उससे निकाला। तो तो ये लेनिन का एक बहुत, लेनिन पे और बात भी हो सकती है लेकिन मैं, मेरा ख्याल है कि इतनी बात काफ़ी है, क्योंकि वो जितनी हम फिर हम आते हैं इकबाल, इकबाल को इससे क्या गर्ज है, इकबाल का मसला क्या है। अल्लामा इकबाल की पहली किताब किसी शायरी की किताब नहीं, 1901 में इकबाल ने पहली किताब लिखी जिसका नाम था इल्मुल इक्तसाद, और बल्कि 1903 में एक किताब शाया हुई इल्मुल इक्तसाद, ये इकबाल की पहली तसनीफ है। और इकबाल का ये ख्याल है, अब ये देखिए ये पूरा बैकग्राउंड है जिसमें कैपिटलिज्म पैदा हुआ है, कैपिटलिज्म अब ईस्ट में एंटर होगा या हो चुका है, मतलब आप 1860s तक इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी तरह इंडिया में आ चुकी थी, और फिर लेट 19th सेंचुरी में जब मज़ीद आपने देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के असरात इसमें आपको इंडिया में नज़र आना शुरू हो गए, लेट 19th सेंचुरी तक आपको आपके आ गए थे। तो ये जो इकबाल ने उस कॉन्टेक्स्ट में इल्मुल इक्तसाद लिखी, इकबाल का ख्याल ये था कि मुस्लिम सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसके जो उसकी जो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको वो समझें, और उन्हें ये पता हो कि कैपिटल की जो मूवमेंट है और कैपिटल का जो फ़्लो है, और कैपिटल का जब फ़्लो रुक जाता है और कैपिटल का जब फ़्लो होता है तो इससे सोसाइटी पे क्या असरात पैदा होते हैं, और सोसाइटी को इसके इस ये पूरी जो इकोनॉमिक कह लीजिए प्रोसेस है, हमारी इंटेलिजेंशिया को या मुस्लिम इंटेलिजेंशिया को उससे ला ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए इसके लिए। तो ये इकबाल की सबसे पहली किताब है, यानी बांगे देरा जो उनका पहला, यानी बांगे देरा या उससे पहले असरार खुदी और रमूज़ बे खुदी वो बाद में शाया हुई है, और सबसे पहले उनकी ये वाली किताब शाया हुई है। तो ये इससे आपको नज़र आता है कि इकबाल का इस पर क्या, यानी उनका एक उनकी दिलचस्पी आपको इस पूरे सब्जेक्ट में नज़र आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बाले जिब्रील 1935 में शाया हुई। 1935 में कोई अहम बात जो दुनिया में हो रही हो, थर्टीज़ के अंदर, 1930s में क्या हो रहा था दुनिया में, 1930s में क्या हो रहा था, हाँ ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन जो है 1929 से 1939, ग्रेट डिप्रेशन जो है वो 20th सेंचुरी का एक बहुत अहम इंसिडेंट है जिसको हम जानते हैं ग्रेट डिप्रेशन के नाम से। स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई थी, और 1929 से 1939 तक कैपिटलिज्म के ऊपर से एतबार शेक हुआ था, यानी कैपिटलिज्म जब अपनी पूरी माइट के साथ आ गया था तो 1929 से 1939 के पीरियड में वो एतबार शेक हुआ है। तो ये वाली जो बाले जिब्रील है ये उस अहद में शाया हुई है, यानी बाले जिब्रील 1935 में शाया हुई है। 1930s में ही मेरा ख्याल है ये प्लूटो भी उसी ज़माने में डिस्कवर हुआ है। इसी तरह रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी तेज़ी से हो रही थी, क्योंकि लेनिन ने जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को अलाउ किया था, बस सिर्फ फ़र्क ये था कि वो स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ थी, वो प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। जैसे इस वक्त जो दुनिया में इंडस्ट्री है वो प्राइवेटली ओन्ड है, कुछ कुछ सिर्फ दो चार कंपनीज ऐसी हैं जो स्टेट ओन्ड हैं, उसका भी मकसद मुनाफा कमाना नहीं है बल्कि कारकुनान को फ़ायदा पहुंचाना होता है, मतलब वो अलग कॉन्टेक्स्ट है मतलब। लेकिन उस ज़माने में वो जो है बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन रशिया में हो रही थी। तो ये 1930s का पीरियड है। अच्छा, चूँकि बाले जिब्रील इकबाल के बिल्कुल आखिरी किताबों में से एक किताब है, यानी बाले जिब्रील के बाद सिर्फ ज़र्बे कलीम शाया होती है अगले साल, और 1938 में तो इकबाल का इंतकाल हो जाता है। तो ये फ़िक्री पुख्तगी जो है, हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो कुछ भी है वो इकबाल की फ़िक्री पुख्तगी का भी मज़हर है, मतलब इसमें एक इकबाल भी एक बहुत बड़ा सफ़र करके एक पॉइंट पर आकर, और बड़ी मतलब इससे पहले इकबाल पिछले यानी 1-2 साल पहले, चंद साल पहले ही इकबाल ने जावेदनामा लिखी है, जो इकबाल का मैग्नम ऑपस कहलाता है, मास्टरपीस कहलाता है, जिसमें इकबाल का पूरा वर्ल्ड व्यू बहुत खूबसूरती से इलस्ट्रेट हुआ है। तो बाले जिब्रील जो है वो इस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है कि जावेदनामा के बाद आ रही है, सेकंड लास्ट बुक है इकबाल के शेरी मजमूए में, इकबाल के इंतकाल से 2-3 साल पहले शाया हुई है, और इकबाल की फ़िक्री पुख्तगी उसके अंदर आपको नज़र आती है। तो बाले जिब्रील की ये नज़म है लेनिन खुदा के हुजूर में। तो मैंने थोड़ा सा कैपिटलिज्म, थोड़ा सा कम्युनिज्म, थोड़ा सा सोशलिज़म, थोड़ा सा कार्ल मार्क्स, थोड़ा सा लेन और थोड़ा सा इकबाल मैंने कोशिश की कि आपके आपके सामने रख दूँ। अब मैं शुरू करता हूँ इस नज़म को लेनिन खुदा के हुजूर में। इस नज़म के बारे में सच्ची बात यह है कि जो हमारे हमारे जो इकबाल को चाहने वाला एक बहुत बड़ा तबका जो है वो राइट विंग में शुमार होता है, लेकिन इकबाल से कुछ उनसियत रखने वाला छोटा सा तबका लेफ़्ट विंग में भी एग्जिस्ट करता है। ये वो नज़म है जो लेफ़्ट विंग वालों को ज़्यादा अजीज़ है, राइट विंग वाले इस नज़म को नज़रअंदाज कर देते हैं, बल्कि कई लोगों ने इस बात पर इज़हार किया कि इकबाल की ये जो नज़म है लेनिन खुदा के हुजूर में, इसको वो तवज्जो क्यों नहीं दी गई, इस पर वो बात क्यों नहीं हुई, बल्कि इकबाल की जो तवील नज़में हैं, इकबाल की, अच्छा इसको इकबाल की फ़िक्र की नुमाइंदा नज़म समझा नहीं जाता अमूमी तौर पर। और मैं अभी पिछले दिनों इस नज़म को ज़रा ज़्यादा तवज्जो से देखने का मौका मिला, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि शायद ये इकबाल की अहम तरीन नज़मों में से एक नज़म है। और मैं इस बात को, मेरा ये ख़्याल है कि इकबाल के शारहीन से और इकबाल के मद्दाओं से ये नज़रअंदाज होती रही है नज़म, तो शायद आने वाले टाइम में नज़म इतनी नज़रअंदाज ना हो, लेकिन ये बहुत ये नज़म, इसको हमने वो तवज्जो नहीं मिल पाई जितनी और नज़मों को, जैसे शिकवा जवाब शिकवा मोस्ट पॉपुलर नज़म काउंट होती है, या साकी नामा या मस्जिद कुर्तुबा, लेकिन ये नज़म जो है ये उतनी तवील नज़म तो नहीं है। इकबाल की 10 तवील नज़मों में इस नज़म का शुमार नहीं होता। ये नज़म एक दरमियानी तवालत की नज़म है, कोई 22 अशार इस नज़म में है, और लेकिन अपने अपनी अहमियत के अतबार से गैर मामूली नज़म है। अच्छा, इस नज़म में इकबाल कर क्या रहे हैं? इस नज़म में जैसे कि टाइटल बता रहा है लेनिन खुदा के हुजूर में, लेनिन इन द कोर्ट ऑफ गॉड, तो ये टाइटल क्या बता रहा है कि लेनिन कहाँ पर हैं? अल्लाह के पास। अगर आप लेनिन खुदा के हुजूर में, अगर आप लेनिन को नहीं भी जानते तो खुदा को तो जानते हैं आप, तो इस कुछ ना कुछ तो आप इस नज़म को जानते ही हैं कि जिसके हुजूर में खड़े हैं उनको तो जानते हैं, अगर आप लेनिन को नहीं भी जानते, लेनिन को भी आप थोड़ा सा तो जान ही गए। तो ये रिसरेक्शन जिसे हम कहते हैं, यानी इंसान मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, या आप इसे आलम बरज़ख में कह सकते हैं कि आलम बरज़ख का बयान है या आलम हशर का बयान है, लेकिन बहरहाल जो भी बयान है, चाहे बरज़ख हो चाहे हशर हो, ये रिसरेक्शन का एक, यानी इकबाल जो हैं वो लेनिन जो हैं अब इस दुनिया से जाके उस दुनिया में पहुँच चुके हैं, और ये नज़म लिखी भी उसी दौर में गई है। मतलब ये जाहिर सी बात है कि 1924-1925 कब हुआ लेनिन का इंतकाल, 1924 में हो गया, 1924 में लेनिन का इंतकाल हुआ, और ये नज़म कही गई होगी कोई 1934 में कही गई होगी, या 1933 में कही गई होगी, और 1935 में तो ये किताब शाया हो रही है, 34 में कही गई है। तो ज़रा सी इस नज़म को देखते हैं। इस नज़म के, जब मैं इस नज़म पे निगाह डालता हूँ तो इस नज़म के चार हिस्से हो सकते हैं। इस नज़म को हम, यानी ये वो हिस्से नहीं है जो शायर ने किए हों, लेकिन मानवीय अदबार से इस नज़म को हम चार हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो पहला हिस्सा जो है उसके अंदर, अगर मैं आपको शुरू के जो 5 अशार हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अशार, शुरू के जो 5 अशार हैं निगारिंदा आनात तक, इसे हम पहला हिस्सा करार दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा हिस्सा है जो दरख्शंदा फिल लज़्ज़ात तक चलता है, ये अगले 5 अशार जो हैं वो फिर दूसरा हिस्सा है, यानी ये कह लीजिए उसके उसके मजामीन के अतबार से, इस नज़म में जो मजामीन ज़ेर बहस आए हैं उसके अतबार से अगर मैं कहूँ कि तो चार बड़े मजामीन ज़ेर बहस आए हैं। और फिर एक तीसरा हिस्सा है जो 7 अशार पर मुश्तमिल है, यूरोप में बहुत रोशनी है, इल्म हुनर है से लेकर और आलात तक, ये 7 अशार हैं, ये फिर तीसरा हिस्सा बनता है मौजू के अतबार से। और फिर चौथा हिस्सा है, वो चौथा मौजू जो है वो आसार तो कुछ कुछ नज़र आते हैं से लेके आखिरी शेर तक, ये चौथा हिस्सा है। तो हम इस नज़म को मौजूआत के अतबार से या मजामीन के अतबार से चार हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा जो है वो खुदा का असबात और फिर इनकार की वजूहात या इनकार के असबाब, इसकी तफसील पर मुश्तमिल है। यानी पहले हिस्से में इकबाल ने काम ये किया है कि लेनिन को मुसलमान करके अपनी बात की है, यानी इकबाल ने अपनी मतलब उस्तादी दिखा दी है, उन्होंने लेनिन के मुंह में अपनी ज़बान डालने की कोशिश की है, लेकिन अब शारहीन इकबाल इस बात पर यानी बहुत सारी इसमें इसमें बहुत ज़्यादा कह लीजिए इख्तलाफ पाया जाता है शारहीन के अंदर। यानी बाज़ शारहीन इकबाल का ख्याल ये है कि ये लेनिन की अपनी ज़बान है, बाज़ का ख्याल ये है कि नहीं, ये इकबाल ने इसमें अपनी ज़बान डाली है, बाज़ का ख्याल ये है कि इकबाल लेनिन की ज़बान बोल रहे हैं, बाज़ का ख्याल ये है कि लेनिन इकबाल की ज़बान बोल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है ये आप ख़ुद तय करेंगे जब हम इसमें आगे देखेंगे, लेकिन बहरहाल ये एक, और चूंकि ये इस तरह का मुतनाज़ा मामला था तो शायद इस वजह से भी कुछ लोगों ने इसको छोड़ के आगे बढ़ गए हों कि भाई ये मामला ऐसा है। तो पहला जो सेक्शन है इसमें खुदा का असबात और इनकार के असबात, इनकार के असबाब, यानी रिफ्यूज़ल ऑफ़ गॉड या डिनाइल ऑफ़ गॉड के पांच बुनियादी असबाब इसमें बयान होते हैं। दूसरा जो सेक्शन है उसमें खुदा से लेनिन एक बहुत कड़ा सवाल कर रहे हैं, ही रेज्ड अ वेरी पॉइंटेड क्वेश्चन, और वो सवाल जो है वो बड़ा यानी गुस्ताखी की हदों तक पहुंचने वाला यानी छूने वाला सवाल है। वो सवाल की जो फॉर्म है वो मैं आपको बयान करूंगा तो आपको अंदाज़ा होगा, वो बड़ा वो एक सवाल लेनिन खुदा से पूछना चाहते हैं। तीसरा जो सेक्शन है उसमें जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म है उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो लिस्ट डाउन किए हैं तीसरे सेक्शन में, कि ये कैपिटलिज्म के साथ या वेस्टर्न कैपिटलिज्म के साथ प्रॉब्लम क्या है, यानी उसके मुफसदात जो हैं वो उन्होंने गिनवाए हैं तीसरे सेक्शन में। और चौथा जो सेक्शन है, चौथा सेक्शन जो है वो एक होप देता है, वहाँ तब्दीली के आसार और तब्दीली का इम्कान ये उस पर मुश्तमिल है। पहले मैं एक एक सेक्शन को पढ़ के और उस सेक्शन के ऊपर अपनी कुछ बात करता हूँ। बिस्मिल्लाह। ए अनफुसो आफाक में पैदा तेरे आयात, हक ये है कि है जिंदा वो पाइंदा तेरी ज़ात, मैं कैसे समझता कि तू है या कि नहीं है, हरदम मुतगैर थे खिरत के नज़रियात, महरम नहीं फितरत के सरूदे अजली से, बीनाए कवाकिब हो के दानाए नबातात, आज आँख ने देखा तो वो आलम हुआ साबित, मैं जिसको समझता था कलीसा के खुराफात, हम बंदे शबो रोज़ में जकड़े हुए बंदे, तू खालिक आसार और निगारिंदाए आनात। तो ये पहला जिसको मैं पहला सेक्शन कह रहा हूँ। तो चूंकि कैपिटलिज्म भी इनकार खुदा के माहौल में पैदा हुआ है और कम्युनिज्म भी इनकार खुदा के माहौल में पैदा हुआ है, तो पहला काम इस शेर में ये हो रहा है, नज़म जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ कलमा पढ़वा रहे हैं इकबाल जो हैं वो लेनिन को, यानी वो खुदा के हुजूर में हाज़िर हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि अनफुस व आफाक का मतलब ये है, अनफुस कहते हैं माइक्रोकॉज़म को, आफाक कहते हैं मैक्रोकॉज़म को, अनफुस कहते हैं मेरी दाखिली दुनिया को, आफाक कहते हैं मेरे बाहर की दुनिया को, आप इसे कायनात आफाक को कह सकते हैं और इंसान अनफुस को कह सकते हैं। तो मेरे अंदर और मेरे बाहर आपकी निशानियां ही निशानियां हैं, मैं इस पे ईमान लाता हूं, मैं आपको आपकी निशानियों के साथ कबूल करता हूं, मैं ये भी मान रहा हूं कि आपकी निशानियां यहां भी हैं, आपकी निशानियां यहां भी हैं, और मैं अब चूंकि आपके सामने खड़ा हूं तो अब मैं आपका इनकार कैसे करता हूं, खुदा के हुजूर खड़े होकर कौन खुदा का खुदा को झुटला सकता है। ये तो कुरान के अंदर भी आया हुआ है कि जब ये सब जमा होंगे तो फिर कहेंगे भाई हम मतलब आज हम ईमान लाए। तो वो यानी इस वक्त लेनिन जो है वो उस फेज़ में है, और हक ये है कि है जिंदा व पाइंदा तेरी ज़ात, यानी आपको तस्लीम करते हैं। तो ये पहला शेर जो है असबात का शेर है, लेकिन अगले जो अशार हैं, जो चार अशार हैं, उसमें इनकार की पांच बड़ी वजूहात सामने आती हैं, और ये हमारे लिए बहुत मैं समझता हूँ ये पूरी नज़म जो है वो बहुत प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशंस और बहुत ही यानी एक ऐसी कॉमेंट्री जो कि बहुत डीपर लेवल पर है, जिसकी कई लेयर्स एक्सप्लोर हो सकती हैं जब हम इस पर गौर करें। ये पूरी नज़म इस तरह की, अगली दो नज़में भी इसी तरह की हैं, जिस पर शायद हम बाद में अपने तौर पर गौर करें तो अच्छा होगा। पहली वजह इनकार की, अब वो देखिए, मैं कैसे समझता कि तू है या कि नहीं है, मेरे इनकार की अब वजूहात की एक लिस्ट मैं पेश कर रहा हूँ, मैं कैसे समझता कि तू है या नहीं, वो क्या वजह थी, हरदम मुतगैर थे खिरत के नज़रियात, मैंने इतने फ़लासफ़ा को पढ़ लिया था, इतनी मतलब मैंने इतनी ज़्यादा मतलब मैंने रैशनैलिटी को, आइडियाज़ को, फ़िलासफ़ी को, इतने सारे नोशंस, और वो कभी एक नोशन आता था, कभी दूसरा नोशन आता था, कभी एक आइडिया आता था, कभी दूसरा आइडिया आता था, दुनिया की इतनी नित नई तौजीहात पेश हो रही थी। और आप जो जो फ़िलासफ़ी के डोमेन में क्या हो रहा है उसका तो अभी हमने ज़िक्र ही नहीं किया, तो आपको पता लगेगा कि खुदा है या नहीं है। यानी जिस जगह पर दुनिया पहुंच गई थी, दुनिया के बड़े फ़िलासफ़ा उस वक्त ये कह रहे थे कि अगर खुदा है तो हमारे पास उसका कोई काबिल तस्लीम एविडेंस मौजूद नहीं है, और अगर खुदा नहीं है तो हम खुदा के ना होने को भी हम शायद साबित ना कर सकें। तो इस जगह पर वो लोग पहुँचे हुए थे, तो एक अजीब सा केओस था। तो पहली वजह जो है, जो मॉडर्न फ़िलासफ़ी थी उसने एक ऐसी कह लीजिए कन्फ्यूजन क्रिएट की, और जो भी उसके साथ कनेक्टेड था उसके लिए खुदा पे बिलीव करना आसान नहीं रहा। तो ये तो पहला सबब आ गया। महरम नहीं फितरत के सरूदे अजली से, बीनाए कवाकिब हो के दानाए नबातात। नेचर नेचर की बुनियादी इंटेंट है क्या, नेचर किस प्रिंसिपल पे खड़ी है, ये हम नहीं पहचान पाए। हमारे जो बड़े यानी बीनाए कवाकिब जो हैं, उससे मुराद जो हैं वो एस्ट्रोनोमर्स हैं, और दानाए नबातात से मुराद जो है वो बायोलॉजी या बॉटनी के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन इससे मुराद ये है कि हमारे अहद के जो बड़े साइंसदान हैं वो चीज़ की माहियत का मुताला करते हैं लेकिन चीज़ की फितरत का राज उन पे मुनकशिफ नहीं हो पाता। इसलिए कि खालिक ने देखिए उनको यानी ये सारी चीज़ें क्यों पैदा हुई हैं और ये किस उसूल के तहत चल रही हैं, ये उन तक मुनकशिफ नहीं हो पाया। लिहाजा जो चीज़ें थीं कायनात की वो निशानी महसूस नहीं हुई, यानी चीज़ों के बारे में इनका इल्म एक मुसलमान से ज़्यादा है, लेकिन इतना इल्म रखने के, चांद के बारे में इतनी मालूमात रखने के बावजूद चांद को निशानी ना समझ पाना, फूल को इतना जानने के बावजूद फूल को निशानी ना समझ पाना, सितारों के बारे में इतना मालूम होने के बावजूद सितारे को निशानी तस्लीम ना कर सकना, ये वो मसला था। यानी वो फितरत का सरूदे अजली, सरूदे अजली बहुत खूबसूरत इस्तला है, मतलब अगर यानी जिसने अज़ल से अबद तक फितरत के उसूल पैदा किए, उसने ये बताया था ना कि कायनात की हर शय सजदा कर रही है, कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, तो इस पॉइंट तक उसकी रियलाइजेशन नहीं हो पा रही थी। तो दूसरी वजह जो थी, यानी पहली वजह तो वो कह लीजिए खिरत के नज़रियात जो थे वो हर वक्त चेंज हो रहे थे, फितरत कहते हैं अकल को। दूसरी वजह ये थी कि फितरत का जो सरूद अजली था वो साइंटिस्ट्स उसको नहीं रियलाइज़ कर पाए थे, यानी वो चीज़ों के बारे में जानते थे, चीज़ों तमाम चीज़ें जिस कॉमन प्रिंसिपल के तहत चल रही हैं। हाँ, सरूद अजली कह लीजिए कि ये एक शायराना इस्तलाह में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। सरूद का जो मतलब है वो तो सरूद अजली कह लीजिए, वो एक नगमा है जो पहले से चल रहा है, लेकिन पॉइंट ये है कि तमाम चीज़ें जो कुछ भी कायनात में था वो जिस प्रिंसिपल पे यानी उसका जो गवर्निंग प्रिंसिपल था और उसका जो इंटेंट ऑफ क्रिएशन था और उसकी जो फितरत साज था उसका, यानी फातिर हस्ती से चीज़ों की फितरत कनेक्ट नहीं, यानी चीज़ों की फितरत नहीं डिस्कवर की, लिहाजा फातिर से उसको कनेक्ट भी नहीं कर सके। चीज़ों के बारे में बहुत जानते हैं लेकिन कायनात में रिदम है, लेकिन वो तो कायनात की यानी इन कायनात की वो तौजीह नहीं निकाल पाए जिससे कायनात का मकसद तख्लीक उन पर वाज़े हो, जिससे वो अल्लाह तक पहुँच सकें। तो ये वहाँ की साइंस ये नहीं कर पा रही थी। तो ये उन्होंने जो मॉडर्न साइंस था उसका ये प्रॉब्लम बताया, मॉडर्न साइंस की ये जो ब्लाइंडनेस है उसको उन्होंने दिखाया। तीसरा जो पॉइंट था, आज आँख ने देखा तो वो आलम हुआ साबित, मैं जिसको समझता था कलीसा के खुराफात, आज आँख ने देखा। ये इस बात, ये तीसरी वजह है, यानी मैं सेंसरी एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट था किसी चीज़ को मानने के लिए। जब तक हिस्से बसारत की गिरफ्त में खुदा ना आ सके, मैं खुदा को खुदा नहीं मानूंगा। ये वो ज़िद थी जहाँ पर पूरी तहजीब खड़ी थी। मतलब नूरे बसीरत अगर किसी हस्ती का असबात, मेरा नूरे बसीरत मुझे किसी हस्ती का असबात नहीं करा पा रहा, मैं अपनी हिस्से बसारत की गिरफ्त में अपने खुदा को लेके आना चाहता हूँ। वो मैं कहता हूँ मेरी आँखों, इन आँखों से 6x6 की जिसकी बीनाई है उसकी गिरफ्त में क्यों नहीं आ पा रहा। तो वो इसको हम कहते हैं कि वो एक सेंसरी एक्सपीरियंस जो था वो उसकी, यानी ये भी एक, ये इशारा है उस एपिस्टीमोलॉजी की तरफ जिस पे पूरी जो वेस्टर्न उलूम थे वो खड़े हुए थे। यानी उसकी अपनी तफसीलात हैं, उसमें लॉजिकल पॉजिटिविटी का, पॉजिटिविज्म का एक पूरा तसव्वुर पाया जाता है। उसमें एक ख़ास एपिस्टीमोलॉजी है जिसके अंदर आप चीज़ों को जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे, जब तक चीज़ों को टेस्ट नहीं करेंगे या हिस्सी तजर्बा नहीं करेंगे, या तब तक हम उस चीज़ की, उसके वजूद को तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये तीसरा मेरा हैंडीकैप था। और चौथा हैंडीकैप ये था कलीसा के खुराफात, यानी इससे मुराद ये है कि कलीसा सिंबल है कह लीजिए रिलीजियस अथॉरिटी का। तो मुझे रिलीजन जहाँ से मिल रहा था, यानी यहाँ कलीसा से मुराद ईसाइत नहीं है, यहाँ कलीसा से मुराद जो भी रिलीजन, तो कलीसा का जो रिटोरिक था या कलीसा का जो नैरेटिव था वो मेरे लिए सेंसिबल नहीं बना था। मैं उस नैरेटिव से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। कलीसा जो कुछ भी बोल रहा था वो मुझे खराफात लग रहे थे, क्योंकि मैं कुछ और बात, यानी वो जो ज़बान बोल रहे थे, उनका उसलूब भी, उनका मुद्दा भी, उनका कंटेंट भी, वो मुझे कुछ और ही बातें कर रहे थे। मतलब वो मुझे बिल्कुल अकल से बालतर बातें मालूम होती थी, मेरे लिए वो इंटेलेक्चुअली अपीलिंग नहीं था। अच्छा, अगर आप गौर करेंगे तो आपको आज के मॉडर्न मैन के अंदर ये चारों वजूहात आज भी नज़र आएंगी। आपको खुदा से बेगानगी की जो वजूहात हैं, ये पाँच वजह, अब मैं पाँचवीं वजह पर आता हूँ। हम बंदे शबो रोज़ में जकड़े हुए बंदे, ये पाँचवीं वजह है। तू खालिक़ आसार व निगारिंदा आनात, यानी अब हम बंदे शबो रोज़ में जकड़े हुए बंदे से मुराद ये है कि हमारा जो लाइफ साइकिल है, या हमारा जो लाइफ फॉर्म है, हमारा जो रूटीन है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, वो एक पिंजरे की तरह है। हम अपने लाइफ स्टाइल के पिंजरे में कैद हैं। वी आर द प्रिजनर्स ऑफ अवर लाइफ स्टाइल। इसमें सुबह होती है, रात होती है, सुबह होती है, रात होती है, सुबह होती है, रात होती है। एक बहुत ही टफ है हमारा रूटीन, जिसमें मोमेंट्स फॉर रिफ्लेक्शन अनअवेलेबल हो गए हैं, ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते। गौर व फिक्र, सोचना, बैठना, अपने ऊपर गौर, कायनात के ऊपर गौर, अच्छा मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, करना क्या था मुझे। तो हमें, हम बंदे शबो रोज़ में जकड़े हुए बंदे जो है, ये बड़ा खूबसूरत इस्तला है। मतलब इससे, इसका मतलब ये है कि मैं यानी अपनी रोज़ाना की, अपने जो निज़ामुल औक़ात की ग़ुलाम गर्दिश में पिसा हुआ आदमी हूँ। यानी मेरे सुबह शाम मुझे बिल्कुल हिलने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते। तो ये एक मतलब इसका ये है। लेकिन एक मतलब इसका और भी बनता है। एक मतलब इसका ये बनता है जो इंसान और अल्लाह से ताल्लुक़ में इंसान देखता है कि भाई हम तो जिस, यानी जो दूसरा मतलब है वो एक और मतलब है, और वो है मसलाए, अगर मैं उसको मसलाए जबर व क़दर जो है वो खुदा के इनकार का बहुत बड़ा हवाला इस वक्त मसलाए जबर व क़दर बना हुआ है हमारी दुनिया में। मतलब अभी मैं इसकी तफसील में नहीं जा सकता, यानी ये है कि भाई आप ही हर चीज़ पे क़ादिर हैं। आप कह रहे हैं कि आपके पास सारा इख्तियार है, आपने ही सब कुछ पैदा किया है, आप तो, आपने मुझे ऐसी लाइफ क्यों दी है भाई, मैं तो इस लाइफ में फंस गया हूँ, मेरी सिचुएशन, मेरे सरकमस्टेंसेस, इतनी मिजरीज, इतनी मिजरेबल लाइफ, तो मैं तो फंसा हुआ हूँ, मैं कहाँ। तो इंसान अपनी मिजरीज को देखता है और ख़ुदा से जो है वो शिकायत लगाता है और कहता है कि अच्छा, अगर खुदा वो है जिसके इज़्ज़न से آسانی بھی ہے اور مشکل بھی ہے، تو میں اتنی مشکل میں کیوں ہوں؟ تو میں نہیں مانتا اس خدا کو جو مشکلیں بھیجتا ہے. تو یہ بھی اس کا ایک دوسرا مطلب ہے. تو یہ دونوں مطلب جو ہیں اس سے نکلتے ہیں. تو خالق آثار و نگارندہ آنات، یعنی آثار کہتے ہیں زمانوں، خالق آثار کا مطلب اثر کی جمع آثار، یعنی زمانوں کا پیدا کرنے والا. یعنی اگر ہم پہ ایک مشکل ٹائم آیا ہوا تھا تو آپ تو ہر طرح کے ٹائم کو پیدا کرنے کے آپ تو خالق آثار ہیں، آپ آسانی کا ٹائم پیدا کر، خوشحالی دے دیتے، تنگ دستی ختم کر دیتے، مزریز ختم کر دیتے، پراسپیرٹی دے دیتے، مجھے ایک کوئی اور عہد دے دیتے. تو یہ ایک اس کا خالق آثار. اور نگارندہ آنات کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ زمانے کو پیدا کرنے والا ہے، زمانہ ایک بڑا ٹائم فریم ہے، اور آنات سے مراد ہے کہ بالکل چھوٹے چھوٹے پل ابھی اس وقت، یعنی جو ارا سے لے کے مومنٹ تک ہر ایک کو تو کریٹ کرتا ہے، ہر ایک پہ تو پورے طور پر اس، یعنی تیری قدرت مومنٹ کے اوپر بھی کار فرما ہوتی ہے، تیری قدرت جو ہے وہ ایک بڑے عہد کے اوپر بھی کار فرما ہوتی ہے. تو مطلب وقت کا بدلنا تیرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور میں وقت کے اندر جکڑا ہوا ہوں. تو یہ جو، تو ذرا سا ہم اسے دیکھتے ہیں، یہ اب اس کو یہ ہے. اچھا، یہ اس طرح بند ہے نہیں، یہ پوری نظم، یہ پوری نظم جیسے کہ بعض نظمیں بند، مختلف بند ہوتے ہیں، اس طرح اس میں منقسم نہیں ہے، یہ ایک ہی پیس ہے. تو ایک مضمون یہاں پر جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے، جس میں ہم بھی پانچ وجوہات دیکھتے ہیں، اور ذرا سا اس کو پیچھے سے دیکھتے ہیں. انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات، میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات، محرم نہیں فطرت کے سرود ازلی سے، بینائے کواکب ہو کے دانائے نباتات، آج آنکھ نے دیکھا تو وہ عالم ہوا ثابت، میں جس کو سمجھتا تھا کلیسا کے خرافات، ہم بندے شب و روز میں جکڑے ہوئے بندے، تو خالق آثار و نگارندہ آنات. اب یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے. ایک بات اگر مجھ کو اجازت ہو تو پوچھوں، حل کر نہ سکے جس کو حکیموں کے مقالات. آسان ہے، اگر اجازت ہو تو میں ایک سوال آپ سے کروں، ایک ایسا سوال جس کو بڑے بڑے فلاسفرز سولو نہیں کر سکیں، یا بڑے بڑے لوگ اس کا جواب نہیں دے سکیں. پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے یہ سوال اور بھی لوگوں سے کیا جو بہت علامہ بنتے ہیں، لیکن اس کا جواب، ایسا جواب جو مجھے جواب میں معلوم ہو، مجھے سیٹسفائی کرنے والا جواب نہیں مل پایا ان سے. اچھا، یہ سوال ہی یہ بتا رہا ہے، سوال کا لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ سوال کچھ خطرناک ہے، کیونکہ اجازت وغیرہ مانگ کے سوال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک بات اگر مجھ کو اجازت ہو تو پوچھوں، تو ہم اجازت لے کے سوال اس وقت کرتے ہیں جب سوال میں گڑبڑ زیادہ ہو، جیسے آپ ناراض تو نہیں ہوں گے ایک بات پوچھوں؟ تو یہ سوال عموماً مطلب ہم ایسے وقت ہی کرتے ہیں جب ناراض ہونے کی ضرورت ہو. تو جب تک میں جیا خیمہ افلاک کے نیچے، کانٹے کی طرح دل میں کھٹکتی رہی یہ بات. خیمہ افلاک کا مطلب یہ ہے کہ اس آسمان کے نیچے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میں پلانٹ ارتھ پہ رہا، ڈیورنگ مائی لائف آن پلانٹ ارتھ، یہ بات، تو اس وقت مجھے ایک بات کانٹے کی طرح میرے دل میں کھٹکتی رہی. اور کھٹکتی جو ہے نا، یہ بہت زبردست مطلب بات ہے کہ دل میں کھٹکتی کیا چیز ہے. دل میں کھٹکتا اس وقت ہے جب آپ، دل میں کھٹکنا جو ہے وہ ڈاؤٹ کا کریکٹرسٹک ہے. دل میں کھٹکنا جب ہم کہتے ہیں نا، یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے ڈاؤٹ ہے. اور دل میں کھٹکنا جسٹیفائیڈ ڈاؤٹ، بعض اوقات ڈاؤٹ کی جسٹیفیکیشن کا بھی استعارہ ہے اور ڈاؤٹ کا بھی استعارہ ہے. دل میں کھٹکتی، تو جب تک میں جیا خیمہ افلاک کے نیچے، کانٹے کی طرح دل میں کھٹکتی رہی یہ بات. اب وہ بات کیا ہے؟ اب وہ بات بیان کرنے سے پہلے پھر تمہید باندھ رہا ہوں. گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات. پھر دوبارہ تمہید باندھ رہے ہیں کہ دیکھیں، میں آپ سے گفتار کے اسلوب، یعنی کس طرح بات کرنی ہے مجھے، مطلب مجھے کمیونیکیشن کی ایتھکس اور ایٹیکیٹس جو ہیں وہ شاید اس کا لحاظ نہ رہے، اور بلکہ ایک جنرل پرنسپل بتا رہے ہیں کہ ہمیں کمیونیکیشن ایٹیکیٹس کا اس وقت خیال نہیں رہتا جب کوئی بات اتنی ہمیں پریشان کر رہی ہو کہ ہمارے وجود کی روح تک، ہمارے وجود کی انر موسٹ تہ تک وہ بات ہمیں، یعنی میں روح کی گہرائیوں تک اس بات کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہوں، تو میں اتنا پریشان ہوں، تو اب میری جو اگر میں کچھ ذرا سا گستاخی بھی کر دوں تو بھائی مائنڈ نہیں کیجیے گا آپ, یہ میں جنرل پرنسپل بتا گیا اب یہ بات, یعنی آپ سوچیں کہ کتنی تمید باندھ رہے ہیں تو بات کیسی ہوگی, سوال کیسا ہوگا. گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات. وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود, وہ آدم خاکی کہ جو ہے زیر سماوات. یہ ہے وہ سوال جو سب سے زیادہ لینن کو جس نے تنگ کیا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں معبود ہوں, آپ کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس کے خدا ہیں, کون آپ کو اس دنیا میں اپنا خدا مان رہا ہے؟ وہ انسان جس کو آپ نے پیدا کیا تھا, جو اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر زندگی گزار رہا ہے, کیا آپ اس انسان کے خدا ہیں؟ تو وہ انسان تو آپ کو خدا نہیں مان رہا. بہت ہی خطرناک سوال. اس سے اگلے سوال میں اس کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں. نہیں, بات پوری سمجھ آ رہی؟ وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود, وہ آدم خاکی کے جو ہے زیر سماوات. مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی, مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات. یعنی مشرق میں جو لوگ بستے ہیں انہوں نے مغرب میں رہنے والوں کو اپنا خدا بنایا ہوا, اور مغرب نے جو ہے وہ شائننگ میٹلز کو اپنا خدا بنایا ہوا, یعنی سونے اور چاندی کو. تو آپ کو کس نے خدا بنایا ہوا ہے, میں یہ پریشان ہوں. اچھا, یہ جو پانچ, یہ جو اس بند میں لینن نے, بلکہ اقبال نے لینن کی زبان سے انکار خدا کی چھٹی وجہ فراہم کی ہے. یعنی پانچ وجوہات تو وہ ہیں جس کے جو ڈائریکٹ ریزنز ہیں کسی انکار کی, انکار خدا کی وہ پانچ ڈائریکٹ ریزنز ہیں جو پہلے حصے میں آئی ہیں. دوسرے حصے میں جو انکار کی وجہ آئی ہے اس میں اقبال نے پوری مسلم امہ کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا. یعنی اس دن لینن ایک ایسی بات کرے گا جس پر خدا کے حضور, جب لینن خدا کے حضور یہ بات کرے گا تو اس کے اوپر پھر ہماری پکڑ بڑی سخت ہوگی. اس لیے کہ کہا یہ جا رہا ہے, جو پوائنٹ ہے اس میں, یہ اس کی بھی ریزنز آگے آئیں گی کہ یہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب کیا یہ انسان آپ کو واقعی مانتا ہے معبود؟ یہ واقعی آپ اس کے معبود ہیں؟ معبود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ معبود ہونے کے مطلب, اس کے مفاہیم اور اس کی معنویت, یعنی وہ, یعنی یہ بہت ڈیٹیل میں, یہ بڑا, یعنی معبود کہتے کسے؟ تو یہ تو اس سے, یہ تو گورے کو سجدہ کر رہا ہے, یہ تو گورے کی غلامی کر رہا ہے. تو کیا یعنی وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود, وہ آدم خاکی کے جو ہے زیر سماوات, مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی, مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات. یہ یہاں پر, یعنی اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی سوسائٹی نے, ریلیجیس سوسائٹی نے اپنے کیریکٹر سے اور اپنے نیریٹو سے, یعنی اپنے, دیکھیں, اپنے نیریٹو سے خدا کے اوپر قائل نہیں کیا. یہ بات تو کلیسا کے خرافات میں پیچھے حصے میں جا چکی ہے, لیکن اپنے کیریکٹر سے نان مسلم کو انسپائر نہیں کیا. اپنے کیریکٹر, دیکھیں, ایک خدا سے ڈرنے والا اس انسان کو جو خدا سے نہیں ڈرتا خدا کے ہونے کا یقین دلائے گا نا. مطلب فرض کیجئے یہ بات, اگر آپ کسی گھر میں آپ کو انوائٹ کیا جائے دعوت پہ, اور اس گھر میں یہ بات صرف مجھے پتا ہو کہ اس گھر میں کوئی اور بھی رہتا ہے جو نظر نہیں آتا, کوئی اور بھی مخلوق رہتی ہے جو نظر نہیں آتی, اور یہ بات صرف مجھے پتا ہو, اور وہ مغرب کے بعد جو ہے نا کبھی کبھی نظر آ جاتی ہے, یہ بات صرف مجھے پتا ہو, اور اس گھر میں 25 لوگ اور آئے ہوں دعوت پر, اور وہ ہنسی مذاق تفریح کر رہے ہوں اور بہت ساری اور انٹرٹینمنٹ میں لگے ہوں اور فل جوائے اور فن جو ہے وہ اپنے پیک پر ہوں, اور وہ صرف میں ایک اکیلا آدمی ہوں جس کو پتا ہو کہ اس گھر میں کوئی اور مخلوق بھی رہتی ہے, اور ابھی مغرب کا ٹائم ہو گیا, ابھی وہ نکل کے آ سکتی ہے, تو میرا کیریکٹر یہ بتائے گا, میرا کیریکٹر اس مخلوق پر یقین کے قابل ان کو بنائے گا. बात समझ आ रही है? मुस्लिम सोसाइटी के कैरेक्टर ने नॉन मुस्लिम सोसाइटी को खुदा पे यकीन के काबिल नहीं बनाया। बात समझ आ रही है? हमारे कैरेक्टर को देख के ये अंदाजा नहीं होता कि हम किसी हस्ती से ऐसे डरते हैं जैसे पुलिस वाले से डर रहे हैं, मतलब उसके बराबर भी नहीं डरते, उसके बराबर भी नहीं डरते जितने, यानी। तो ये वो क्वेश्चन है जो यहां पर इकबाल ने लेनिन के मुंह से निकलवाया है। अब हम तीसरे हिस्से की तरफ जाते हैं कि वो कैपिटलिज्म का इशू क्या है। यूरोप में बहुत रोशनी है, इल्म हुनर है, हक ये है कि बेचश्माए हैवा है ये जुल्मात। यानी ये बात सही है कि यूरोप में बहुत नॉलेज है, बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी उसमें आपको नई नई चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन बात यह है कि ये जो इनलाइटनमेंट यूरोप के पास आई है, इस ये बेचश्माए हैवा का मतलब ये है कि इसमें इंसान की, यानी इंसान को उसकी ज़िंदगी का सुराग नहीं मिल रहा, ज़िंदगी की मानवियत इससे नहीं मिल रही हमें। चीज़ों का इल्म हो रहा है, ज़िंदगी की, यानी यूरोप की जो साइंसेज हैं वो मुझे अपने होने की कोई कन्विंसिंग जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रही, मुझे मेरी लाइफ की मीनिंगफुलनेस उससे नहीं मिल रही, तो ये प्रॉब्लम मेरा है। तो ये इशारा है कि, बल्कि उसे जुल्मात कह रहे हैं कि ये यहाँ से हमें वो रोशनी, वो चीज़ नहीं मिल रही। रानाई ये तामीर में, रौनक में, सफ़ा में, यानी आर्किटेक्चर में, और उसकी जो है वो कह लीजिए उसकी उसकी प्रेस्टिज में या उसकी शान में और उसकी जो है वो उसकी मेंटेनेंस में, गिरजों से कहीं बढ़ के हैं बैंकों की इमारत। यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले में अपने आर्किटेक्चर में, अपनी अपनी मेंटेनेंस में, अपनी वैल्यू में, सोसाइटी में की सेंट्रलिटी के लिहाज से, सोसाइटी में लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिहाज से कहीं बढ़ के हैं। और ये जो बैंक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और गिरजा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये एक ही फ्रेज़ के अंदर इकबाल ने कैपिटलिज्म का जो सबसे मेजर इंस्टीट्यूशन है वो बैंक है, यानी, और जो रिलीजियस कह लीजिए ट्रेडिशन है उसका जो सबसे अहम, यानी आप मस्जिद कहें, गिरजा कहें, कलीसा कहें, वो ये एक इस्तारा है, मतलब ये एक सिंबल है, इससे मुराद, यानी तो सोसाइटी उन पर उस तरह से तवज्जो नहीं दे रही। और रौनक से एक मुराद ये भी है कि यहाँ लोग आते ही नहीं हैं, यहाँ लोग आते हैं, लोगों के आने से भी रौनक होती है, तो यहाँ ये तवज्जो उसको वो हासिल नहीं हुई। रानाई तामीर से मुराद जो आर्किटेक्चरल ग्रैंडर है उसका, जो आर्किटेक्चरल ब्यूटी है उसकी। जाहिर में तिजारत है, हकीकत में जुआ है, सूद एक का लाखों के लिए मर्गे मफाजात। यानी बज़ाहिर ये ट्रेड है लेकिन एक्चुअली ये जुआ है। और सूद जो है, सूद से यहाँ दो मतलब लिए जा सकते हैं। सूद से एक मुराद सिर्फ प्रॉफिट है, यानी, और सूद से एक मुराद वो इंटरेस्ट है जिसे हम रिबा कहते हैं। सूद से एक मुराद फ़ायदा है, सूद से एक मुराद रिबा है। दोनों के अंदर, दोनों में से कोई भी मतलब लें, बात पूरी समझ में आ जाती है कि कैपिटलिज्म के अंदर चंद लोगों को फ़ायदा होता है और बाकी सबको जो है वो सबकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, सबको नुकसान होता है। और दूसरा वो जो रिबा है, अगर रिबा भी है तो वो भी पूरी सोसाइटी के लिए उसमें नुकसान है और एक आदमी का उसमें फ़ायदा है। ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू, देते हैं तालीम मसावात। तो इल्म से मुराद यहाँ एपिस्टीमोलॉजी है, यानी साइंस। यहाँ इल्म से मुराद वो एपिस्टीमोलॉजी, इल्म से मुराद साइंटिफिक मेथड है यहाँ पर। और हिकमत से मुराद वो नॉलेज जो साइंस, साइंटिफिक मेथड के नतीजे में निकल के आ रही है। और तदब्बुर से मुराद वो रिसर्च जो हम ग्रीक फिलॉसफी पे कर रहे हैं, या वो रिसर्च जो हम جو کچھ بھی سائنس ہمیں دے رہی ہے اس کے اوپر فردر جو ہم ریسرچ کر رہے ہیں اس کو یہاں تدبر اس سے مراد ہے. اور یہ حکومت سے مراد یہ ہے کہ جو فارم آف پالیٹکس اب ایمرج ہوا ہے, یعنی مثال کے طور پر اس سے ڈیموکریسی بھی ہو سکتی ہے, اس سے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, جو سسٹم آف گورننس اس کے نتیجے میں پیدا ہو رہا ہے, جو پولیٹیکل آرڈر اس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے, یہ سب جو ہیں پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. یعنی یہ جو کچھ بھی ہے, چاہے یہ ریسرچ ہو, چاہے یہ سائنس ہو, چاہے اس کی فائنڈنگز ہو, یہ سب جو ہیں یہ انسان کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں, انسان کے لیے مفید نہیں ہیں. ان کی فائنڈنگز اور ان کے فروٹس جو ہیں وہ انسان کے لیے غیر نافع بنتے جا رہے ہیں. اور یہ جو ان کا سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کے لیے, یعنی برابری کا سلوگن ان کا یہ ہے, لیکن ایکچولی ایسا ہے نہیں. بیکاریو اوریانیو میخاریو افلاس ان امپلائمنٹ, اور جناب نیوڈیٹی, اور جناب ڈرنکنگ, اور پاورٹی. یہ کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات. یعنی فرنگی مدنیت کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن, تو ویسٹرن سویلائزیشن کی جو پروفٹس ہیں, یا ویسٹرن سویلائزیشن کے جو نے جو کچھ ہمیں ڈیلیور کیا ہے, فتوحات سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس نے کیا ہمیں دیا, اس کے کیا ڈیلیوریبلز ہیں. اس نے یہ ڈیلیور کیا, اس نے انمپلائمنٹ دی, اس نے ہمیں اوریانی دی, اس نے بے حیائی دی, اس نے بے میخاری یعنی ڈرنکنگ کا ایک کلچر دیا, اس نے جو ہے غربت دی, پاورٹی دی. اور پاورٹی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ پاورٹی کی کیا شکل ہے اس وقت دنیا میں, کس طرح لوگ, یہ جہاں جہاں بھی کیپیٹلزم ہے وہاں کے کیا مسائل ہیں. یعنی اب تو پوری دنیا میں ہی ہے کیپیٹلزم, تو پوری دنیا میں ہی پاورٹی آپ کو نظر آئے گی. فتوحات کو تنزیہ انداز میں, بالکل. وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم, حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. فیضان سماوی سے مراد یہ ہے ڈیوائن گائیڈنس. وہ قوم جو ڈیوائن گائیڈنس سے ڈسکنیکٹڈ ہو, ہاں ڈیوائن گائیڈنس وہی, اس کے کمالات کی حد جو ہے وہ, اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈسٹریل ریولوشن ہی تو لا سکتی ہے. برق و بخارات سے مراد الیکٹریسٹی اور اسٹیم انجن آپ کہہ لیں, یعنی جو جس کے بیسس پر الیکٹریسٹی اور اسٹیم انجن کا جو پورا فنومنا تھا, اس کی بیسس پہ پوری انڈسٹریل ریولوشن جو تھی وہ اس کے نتیجے میں آئی تھی, اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. وہ بہت بڑا جو میسف پوری دنیا میں جو اسپریڈ ہوا, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ڈیوینٹی سے لا تعلق رہیں گے تو جس طرح کی چیزیں آپ پروپوز کریں گے وہ مادی ترقی آپ کو ممکن کرے گی, روحانی ترقی آپ کے لیے ممکن نہیں کرے گی. انسان کو کلی طور پر سیٹسفائی نہیں کر سکے گی. انسان کی میٹیریلسٹک نیڈ کا تو احاطہ کر لے گی, لیکن انسان کی نان میٹیریلسٹک نیڈس کو فلفل نہیں کر سکتی. تو اس کی حد کمال یہ ہے کہ وہ آپ کی میٹیریلسٹک نیڈس کو ایبنڈنس میں, یعنی آپ کو بہت ساری مٹیریل ایبنڈنس دے دے, لیکن وہ آپ کی اسپریچولی آپ اسٹافٹ کریں گے, یہ آپ کا مسئلہ ہوگا. اور اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ اگلا شعر جو ہے, اب جو اگلا شعر ہے وہ شاید پوری نظم کا, ہم اسے پوری نظم کا نمائندہ شعر کہہ سکتے ہیں. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ پوری نظم کا کلائمیکس اس شعر میں آتا ہے, کہ یہ وہی بات ہے جو پچھلے شعر میں اقبال نے جو بات کہی کہ اس کے کمالات کی حد جو ہے وہ انڈسٹریل ریولوشن تک ہوگا, وہ میٹیریلسٹک نیڈ پوری کرے گی. اب آپ اس کو دیکھیے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یعنی ایک ایسی سوسائٹی, ایک ایسی انڈسٹریلائزڈ سوسائٹی, اس کے اندر تمہارا دل جو ہے اور اس کی جو احساس ہے وہ تمہارا ختم ہو جاتا ہے, تمہارے لیے دوسری چیزیں اہم ہی, تم ایک مشین بن جاتے ہو, تم خود ایک عجیب بے حس سے انسان بن جاتے ہو, تمہارے ساتھ دوسرے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, تم اپنی روحانی ضروریات کا انکار کرتے ہو, اس کے نتیجے میں پرابلم پیدا ہوتا ہے. مشینوں کی حکومت سے کیا مراد ہے؟ مشینوں کی حکومت سے ایک مراد تو یہ ہو سکتی ہے, یعنی ہم اس کو ذرا سا کھولتے ہیں کہ مشینوں کی حکومت کیا ہو سکتی ہے. ایک بات تو یہ کہ مشین کی حد سے زیادہ ہماری مشینوں پر ڈیپینڈنس, حد سے زیادہ انڈسٹری کے اوپر ہمارا لائف سٹائل اوورلی ڈیپینڈنٹ ہو. اگر اس وقت انڈسٹری بند ہو جائے अगर ये पता लगे कि दुनिया के सारे कारखाने बंद हो गए हैं, अब चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी, तो यही लगेगा ना दुनिया, अब दुनिया कैसे चलेगी। तो ओवर डिपेंडेंस मशीनों के ऊपर। दूसरी बात ये कि गैर ज़रूरी तौर पर या इंतहा दर्जे की जो है वो चीज़ों को, मशीनों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को गैर ज़रूरी तौर पर और हद से ज़्यादा जो है वो अहमियत हम दें, ये भी इससे मुराद है कि हम उसका वो मुकाम दे रहे हैं हम जो उसका मुकाम नहीं होना चाहिए। यानी उन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत करना शुरू कर दिया, यानी उनको हमने इतना इतना मुकाम दे दिया। और आप देखिए ये, आप ये उस दौर का शेर है जब रोबोट्स नहीं बने थे, ये उस दौर का शेर है जब मैनलेस कार्स नहीं पैदा हुई थी, जब ड्रोन नहीं आया था, जब ऑटोमेटेड प्रोसेसेस जो हैं वो इंसान को गाइड नहीं कर रहे थे। अब तो इंसान एक सिस्टम को फॉलो करेगा ना, मतलब वो यानी वो जो मैनलेस कार है या कोई ऐसी डिवाइस है वो आपको बताएगी ना कि अब करना क्या है। आप थोड़ी, गूगल उस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, गूगल, ये उस दौर का शेर है। अब हम आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। आसार तो कुछ कुछ नज़र आते हैं कि आखिर तकदीर को तदबीर को तकदीर के शातिर ने किया मात। अब कुछ आसार नज़र आने शुरू हुए हैं कि ये जो माइट ऑफ कैपिटलिज्म है, इसके ऐसे कुछ हमें फीलिंग्स आ रही हैं, ऐसे कुछ आसार लग रहे हैं कि शायद ये भी, इसको भी जवाल आना है। अब आप देखिए, ग्रेट डिप्रेशन, ये जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है इसका वो है ना, ग्रेट डिप्रेशन। दुनिया में एक चैलेंज जो है वो कैपिटलिज्म को, एक बड़ा चैलेंज जो है वो उसकी 1929 से 1939 में देखा है, ठीक है। तो ये आसार तो कुछ कुछ नज़र आते हैं कि आखिर तदबीर को तकदीर के शातिर, तकदीर का शातिर का मतलब ये है कि मशीयत खुदावंदी, तकदीर के शातिर से मुराद ये है कि तकदीर का कातिब, तकदीर बनाने वाला, उसने, इंसान अपनी चालें चल रहा था और खुदा ने अपनी चाल चल दी। तो ये लेनिन ये कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद आप कोई चाल चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कैपिटलिज्म के आगे आप कोई, मतलब इसमें कोई आपकी कुदरत जो है कोई गुल खिलाने वाली है, ऐसा हमें लगता है। अब ये, और ये क्यों लग रहा है, अब वो क्यों लग रहा है कि अब आगे जस्टिफिकेशन भी देते हैं, उसकी डिटेल देते हैं। मैखाने की बुनियाद में आया है तजलजुल, बैठे हैं इसी फिक्र में पीरान खराबात। मैखाना जो है वो वेस्टर्न सोसाइटी को उन्होंने मैखाने से ताबीर किया है। और मैखाने से क्यों ताबीर किया है, इसलिए कि उस सोसाइटी के अंदर इंसान का गोल है प्लेजर मैक्सिमाइज करना, इंसान का गोल है अपनी लाइफ के अंदर मस्त हो जाना, इंटरटेनमेंट को सीख करना, अपनी लाइफ में मस्त हो जाना, गुम हो जाना, ऐश, यानी मतलब सबसे अच्छी लाइफ वो है जो सबसे ज़्यादा ऐश कर रहा है। तो पूरी वेस्टर्न सोसाइटी के लिए जो, यानी इससे खूबसूरत सिंबल क्या हो सकता है, मैखाना। मैखाने की बुनियाद में आया है तजलजुल, यानी जलजला आ गया है मैखाने की बुनियाद में, और बैठे हैं इसी फिक्र में पीरान खराबात। पीरान खराबात का मतलब ये है कि जो अथॉरिटीज़ हैं इस मैखाने की, जो बड़े हैं इस मैखाने के, वो परेशान हो गए हैं कि हमारी सोसाइटी आगे कैसे फंक्शन करेगी। चेहरों पे जो सुर्खी नज़र आती है सरे शाम, या गाज़ा है या सागर व मीना की करामात। इस वक्त जो वेस्टर्न सोसाइटी में लोगों के चेहरों पर, अगर कोई आपको उनके चेहरे पे अगर कोई खुशी और आसूदगी और अगर कोई किसी लेवल पर हैप्पीनेस नज़र आती है, तो वो हैप्पीनेस या तो उनके कॉस्मेटिक्स की वजह से, गाज़ा कहते हैं वो जो आपने ऊपर से पाउडर वाउडर कुछ लगा लेते हैं आप, कॉस्मेटिक यानी फेस के ऊपर कुछ मेकअप, या तो वो, इट इज़ दे आर लुकिंग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, दो में से एक वजह हो सकती है, या तो वो उनका मेकअप है या फिर उन्होंने जो है वो ड्रंक हैं, या तो उन्होंने, या तो यानी उन्हें सुकून, असल में जो, जिसे सुकून कहते हैं, यानी ये इशारा इस बात की तरफ कि जिसे सुकून कहते हैं उस सोसाइटी में उनके चेहरों पर वो सुकून नज़र नहीं आता। अगर किसी को ये महसूस, अगर वेस्टर्न सोसाइटी के किसी इंडिविजुअल को देखकर आपको ये गुमान हो रहा है, ये हम जनरल बात कर रहे हैं कि अगर हमें ये गुमान हो कि ये बहुत सुकून इसके पास है, तो ये आपका वाहिमा है। सुकून वकून नहीं है वहाँ पर, वो बहुत परेशान है। सुकून इसलिए है क्योंकि उसने एक मेकअप किया हुआ है, या मतलब चेहरे पे एक ऐसा उसने अपना मास्क बनाया हुआ है कि वो ऐसा लग रहा है कि वो दे आर लुकिंग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड पीस दे आर, लेकिन वो एक्चुअली दे आर नॉट इन पीस। और या फिर वो ड्रग्स उन्होंने लिए, तो किसी वजह से वो, या वो ड्रिंक किया है उन्होंने, तो उनका सुकून जो है वो असल में सुकून नहीं है उनका। तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। यानी ये खुदा से मुखातिब हो के हमारा मसला अल्लाह के हुजूर में पेश कर रहे हैं कि दुआ मांग रहे हैं, जैसे जैसे हम भी कभी कभी दुआ मांगते हैं, या अल्लाह आप तो कुदरत वाले हैं, आप तो चाहें तो सब कुछ सही कर सकते हैं, या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, शाम के मुसलमान बड़ी तकलीफ़ में हैं, या अल्लाह आप कादिर हैं, आप चाहें तो ये एक लम्हे में ठीक कर दें, या अल्लाह आप इन्हें ठीक कर दें, या अल्लाह आप इनके मामलात को सही कर दें। ये वो वाली कैफियत है कि इंसान अपनी तकलीफ़ बयान कर रहा है और अल्लाह की जो कुदरत है और अल्लाह का जो अदल है उसको पुकार रहा है। तो तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहाँ में हैं तल्ख बहुत बंदाए मज़दूर के औकात। यहाँ मज़दूर से मुराद वाक़ेतन लेबर नहीं है, यहाँ मज़दूर से मुराद तमाम वो लोग जो इस सिस्टम के अंदर किसी ना किसी शक्ल में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यानी यहाँ टीचर्स भी हैं, यहाँ और भी लोग हैं, वो हर कॉमन मैन जो है, यहाँ तमाम कॉमन मैन को मज़दूर कहा गया। तो यहाँ पर एक और बात भी आ रही है कि यहाँ मसला खैर व शर जो है, जैसे मसला जबर व क़दर और मसला खैर व शर दोनों जो हैं इस नज़म के अंदर बिटवीन द लाइंस इशारा हुआ है उसकी तरफ कि ये भी एक मसला है जो जिसको देखने की। और फिर आखिरी शेर है, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफ़ीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर रोज़े मकाफात। सफ़ीना कहते हैं कश्ती को, तो कब ये कश्ती डूबेगी? तो ये शेर ये बता रहा है कि इसका डूबना यकीनी है। खुदा के हुजूर में खड़े होकर अगर कोई बात कही जा रही है तो उसके अंदर एक सच्चाई का आंसर नज़र आता है। यानी कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफ़ीना, इसका मतलब है कि सफ़ीने का डूबना यकीनी है, और दुनिया है तेरी मुंतज़िर है रोज़े मकाफात। यानी आपकी जजमेंट, आपकी फ़ाइनल डिसीशन, आपके ऑर्डर की अब दुनिया मुंतज़िर वेट कर रही है कि बस अब आप इस पूरे का बदला जो है वो हमें दें, मतलब कुछ हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये लेनन खुदा के हुजूर में नज़म जो है वो कम्प्लीट हुई है। अगर एक दफ़ा मैं इस नज़म को फिर एक दफ़ा पढ़ देता हूँ ताकि अब इसके सारे मफाहिम जहन में हैं तो शायद ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी, इसका लुत्फ़ ज़्यादा आएगा इंशाल्लाह। ए अनफुस व आफाक में पैदा तेरे आयात, हक ये है कि है ज़िंदा व पाइंदा तेरी ज़ात। मैं कैसे समझता कि तू है या कि नहीं है, हर दम मुतगैर थे खिरत के नज़रियात। महरम नहीं फितरत के सरूदे अजली से, बीनाए कवाकिब हो के दानाए नबातात। आज आँख ने देखा तो वो आलम हुआ साबित, मैं जिसको समझता था कलीसा के खुराफात। हम बंदे शबो रोज़ में जकड़े हुए बंदे, तू खालिक़े आसार व निगारिंदाए आनात। एक बात अगर मुझको इजाज़त हो तो पूछूं, हल कर ना सके जिसको हकीमों के मकालात। जब तक मैं जिया खेमा अफलाक के नीचे, कांटे की तरह दिल में खटकती रही ये बात। गुफ्तार के उसलूब पे काबू नहीं रहता जब रूह के अंदर मुतलातिम हो ख्यालात। वो कौन सा आदम है कि तू जिसका है माबूद, वो आदम खाकी के जो है ज़ेर समावात। मशरक के खुदावंद सफ़ीदान फरंगी, मगरब के खुदावंद दरख्शंदा फिलिज़ात। यूरोप में बहुत रोशनी है इल्म हुनर है, हक ये है कि बेचश्माए हैवां है ये जुल्मात। रानाई तामीर में, रौनक में, सफ़ा में, गिरजों से कहीं बढ़ के हैं बंकों की इमारात। जाहिर में तिजारत है, हकीकत में जुआ है, सूद एक का लाखों के लिए मर्ग मफाजात। ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मसावात। بیکاری و اریانی و میخاری و افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات؟ وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات۔ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ آثار تو کچھ کچھ نظر آتے ہیں کہ آخر تدبیر کو تقدیر کے شاطر نے کیا مات۔ میخانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیران خرابات۔ چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سرے شام، یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ؟ دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ اس کے بعد جو دو چھوٹی نظمیں ہیں میں ان پہ اتنی تفصیل سے بات نہیں کروں گا، لیکن ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا مختصر سا بیان ہو جائے تاکہ وہ بات مکمل ہو جائے۔ لینن نے خدا کے حضور میں جو اپنی عرضی پیش کی اس پہ فرشتوں کو حال آ گیا، اور فرشتے جو ہیں انہوں نے ایک کورس میں ایک نغمہ خدا کے حضور میں پڑھا، اور یہ جو گیت فرشتوں نے خدا کے بارگاہ میں گایا ہے یہ گیت لینن کی عرضی پر ایک انڈورسمنٹ ہے۔ یعنی اس کی حیثیت ایسی ہے کہ جو لینن نے جو کچھ کہا ہے، ہم لینن سے تو کچھ نہیں کہہ رہے کیونکہ لینن نے تو آپ سے کہا ہے، ہم کہاں آپ کے بیاف پہ لینن سے کچھ کہیں، لیکن ہمیں بھی موقع مل گیا کہ اب ہم بھی کچھ بات، ہم اپنی آبزرویشنز بھی ایڈ کر دیں تاکہ لینن کی عرضی پہ ہم اپنی بھی اسٹیمپ لگا دیں تاکہ مزید اس کا وزن بڑھ جائے۔ تو اب دیکھیں فرشتے اپنی کیا آبزرویشنز دے رہے ہیں۔ اچھا، فرشتوں کا معاملہ یہ ہے، انسان اور فرشتے میں فرق یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ کچھ بھی دیکھنے پہ قادر ہوں گے، ہمارا یہ خیال ہے، جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ پا رہی ہوگی۔ تو فرشتوں نے کچھ اور بھی احوال بیان کیے ہوں گے جو لینن بیان نہیں کر سکا ہوگا، تو وہ اس حصے میں آپ کو نظر آئے گا۔ بہت کہیں یہ تینوں نظمیں کنیکٹڈ ہیں، یہ تینوں بالکل تینوں نظمیں ایک ساتھ ہیں، تینوں نظمیں اسی ترتیب میں ہیں، یہ تینوں ایک ہی ڈرامہ ہے، یا ایک ہی سمجھ لیں اسٹوری ہے۔ یعنی نظمیں تین ہیں لیکن یہ سیکول ہے اس کا، بلکہ اسی طرح کے ایک سیکول ضرب کلیم میں بھی ہے۔ ضرب کلیم کے اندر کارل مارکس کی آواز، اشتراکیت اور انقلاب، یہ تین چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، بالکل تینوں اسی طرح ایک ساتھ ہیں، بالکل اسی طرح، لیکن بہت نسبتاً بہت چھوٹے ہیں، یہ تو پھر بھی تھوڑے سے۔ تو فرشتوں کا گیت جو پانچ اشعار پہ مشتمل ہے ذرا دیکھتے ہیں۔ عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، نقش گرے ازل تیرا نقش ہے نا تمام ابھی۔ یعنی عقل جو ہے وہ اپنی باؤنڈریز سے اویئر نہیں ہے، اور عشق جو ہے، عشق کو سوسائٹی میں جو مقام حاصل ہونا چاہیے وہ عشق کو وہ مقام سوسائٹی دے نہیں پائی، عشق کو اپنا مقام ملا نہیں ہے، اور عقل جو ہے وہ اپنی باؤنڈریز سے اویئر نہیں ہے۔ نقش گرے ازل تیرا نقش ہے نا تمام ابھی، یعنی رب کریم آپ نے جس مقصد کے لیے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ خلق خدا کی گھات میں رند و فقی و میر و پیر، یعنی چاہے وہ بگڑے ہوئے لوگ ہوں، چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں، سب کے سب انسانوں کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ وہ بات ہے جو لینن اس لیے نہیں کہہ سکتا تھا کہ لینن نے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب جو فرشتے کی نظر سے، تو وہ فرشتہ تو دل ول کے حال بھی جان رہا ہے نا، تو وہ پھر دوسری طریقے سے بتا رہا ہے۔ یعنی رند و فقی و میر و پیر، یعنی میر کا مطلب ہے کہ رچ، پیر کا مطلب ہے کہ یعنی ایک صوفی آپ کہہ لیجئے یا جو بھی، ہاں، اور فقی یعنی جو لائر، جو لا یعنی شریعہ کو نافذ کرنے والا آپ کہہ لیجئے۔ خلق خدا کی گھات میں، گھات کا مطلب یہ ہے کہ سب ان کو یوز کر رہے ہیں، سب ان کو یوز، یعنی انٹینٹ اور سنسیئرٹی کے اوپر فرشتوں نے کہا کہ اخلاص نہیں ہے ان کے اندر، وہ اخلاص نہیں ہے ان کے اندر، وہ للہیت نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی کام کر رہے ہیں۔ خلق خدا کی گھات، یہ آپ سوچئے کہ لینن کے بعد فرشتے اس میں مزید ایڈ آن کر رہے ہیں، کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ خلق خدا کی گھات میں رند و فقی ہو میر و پیر، تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی۔ بس یہ صبح شام ایسی ہو رہی ہے، لیکن زندگی کی معنویت اور زندگی کا مقصد، اور آپ نے جس مقصد کے لیے کائنات کو بنایا تھا، یہ ابھی اس پہ کچھ نہیں ہوا ہے۔ آپ کی نیابت کا حق ابھی ادا نہیں ہوا ہے. تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست، بندہ ہے کوچہ گرد ابھی، خواجہ بلند بام ابھی. یعنی اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو امیر ہیں وہ مال میں گم ہو گئے، اور جو غریب ہیں وہ اپنے مسئلوں میں پریشان ہو گئے. یعنی یہاں فقیر اور حال جو ہے یہ روایتی صوفیانہ معنی میں نہیں ہے. یہاں فقیر اور حال جو ہے وہ فقیر، یہاں فقیر سے مراد مفلس ہے، اور حال سے مراد وہ اپنی پریشانیوں میں گم ہیں. یعنی عموماً فقیر اور حال جو ہیں ان کے بہت بڑے مطلب ہیں، اور وہ اقبال کی شاعری میں وہ بہت بڑے مفاہیم اور بڑے معنوں میں آئے ہیں، یہاں پر وہ اس معنی میں نہیں آئے. تو تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست، بندہ ہے کوچہ گرد ابھی، خواجہ بلند بام ابھی. یعنی لوگ بس ایسے ہی گھوم رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، پریشان ہیں، وانڈرنگ کر رہے ہیں، لیکن دے آر لاسٹ، اور وہ نہیں ابھی انہوں نے سراغ پایا. دانش و دین و علم و فن، بندگی حوث تمام، عشق گرہ کشائے کا فیض نہیں ہے عام ابھی. یعنی اس وقت جو کچھ بھی ایجوکیشن، جو کچھ بھی نالج، جو کچھ بھی ریلیجن، جو کچھ بھی اسکلس مل رہی ہیں، وہ سب کی سب اپنی وانٹس اور اپنی گریڈ کو اور اپنی ڈیزائرس کو پورا کرنے کے لیے ہم انسان حاصل کر رہا ہے. ہر چیز کو اپنی ڈیزائرس کو پورا کرنے کے لیے اس نے حاصل کیا ہے. عشق گرہ کشائے کا فیض نہیں ہے عام ابھی، یعنی جسے سیلف لیسنس، عشق سے مراد یہاں سیلف لیسنس ہے، عشق سے مراد یہاں وہ عشق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کریم سے محبت کے ساتھ تکمیل پاتا ہے. یعنی وہ والا عشق جو ہے وہ ابھی وہ نصیب نہیں ہوا ہے انہیں. اور پھر آخر میں فرشتے اپنا کنکلوژن بھی بیان کر رہے ہیں، اپنی آبزرویشن. جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی. اگر اس نظم کا جو سب سے اہم لائن، اگر اس پورے نظم کی سب سے اہم جو فرشتوں کے گیت میں ہے وہ یہی والی لائن ہے، جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی. یعنی زندگی کا جو ایسنس ہے وہ عشق ہے، سیلف لیسنس ہے. سچی خوشی اور سچا سکون اور سچا اطمینان دینے سے ملتا ہے، لینے سے نہیں ملتا. کسی کی خاطر لٹ جانے میں، کسی کی خاطر لٹا دینے اور کسی کی خاطر کچھ دے دینے میں ملتا ہے، لینے میں نہیں ملتا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ یعنی جوہر عشق ہے خودی، یہ عشق اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جوہر عشق ہے خودی، یعنی عشق کا جو ایسنس ہے، دا ریئل ایسنس آف لو از خودی. خودی کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو اپنے مقام کو جانتا ہے، وہ اپنی قربانی کو اس جذبے سے پیش کرتا ہے. مطلب یہاں سیلف اویئر انسان کی قربانی مانگی جا رہی ہے، یعنی یہ ایک الگ ڈائمنشن ہے. آہ کہ ہے یہ تیغ تیز پردگی نیام ابھی، یعنی اس وقت جو خودی کی تیغ ہے وہ ابھی تک نیام میں پڑی ہوئی ہے، وہ ابھی باہر نکلی نہیں ہے. پھر اب ان دونوں کی بات سننے کے بعد اب خدا اپنا آرڈر جاری کر رہے ہیں، گاڈس کمانڈ ٹو ہز اینجلس، فرمان خدا فرشتوں سے. اچھا اب اس میں جو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اقبال یہ بات خدا سے فرشتوں کو کہلوا رہے ہیں. اچھا یہ جو لوگ اقبال کو پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ اقبال کے اندر مکالمہ انسان و خدا بہت جگہوں پہ ہے، فرشتوں کے ساتھ یہ وہ پورا جاوید نامہ اسی کے ساتھ ہے، اور بہت ساری اور جگہوں پر ملتا ہے. تو یہ پوئٹری کے اندر اور پرشین پوئٹری کے اندر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کا ایک پورا، یعنی انسان خدا سے بات کر رہا ہے، خدا انسان سے بات کر رہا ہے، تو یہ پوئٹری کے اندر بہت زیادہ اس کا ڈسپلے موجود ہے. تو یہاں پر جو یہ آٹھ اشعار جس میں خدا نے اپنا فرمان جاری کیا ہے، اس میں ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ فرشتوں کو فرمان جاری ہوا ہے، انسان کو فرمان جاری نہیں ہوا ہے. ان اشعار کے ساتھ جو مس پرسیپشن وابستہ رہا ہے وہ یہ کہ جب میں یہ اشعار پڑھوں گا تو بہت سے لوگ یہ لگتا ہے کہ یہ شاید ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم یہ کام کر دیں. اصل میں بات یہ ہے کہ فرشتوں کو یہ حکم جاری ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشیت نے ان سب چیزوں کو منظور کر لیا. مشیت کے ایجنڈا پہ یہ چیزیں لسٹ، یہ مشیت کے ایجنڈا کا پارٹ بنی ہے. یہ مشیت کا ایجنڈا اور انسان کے کرنے کے کام دو الگ چیزیں. حضرت خضر علیہ السلام جو ہے مشیت کے اذن سے چیزیں کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے اپنی جو انسان کو جو شریعت کا پیرامیٹر ہے اس کے اندر سوال کر رہے تھے، آپ نے اس کو کیوں مار دیا، آپ نے یہ کیوں کر دیا، آپ نے یہ کیوں کر دیا. تو وہ مشیت، انہیں پتہ تھا وہ مشیت ازدی سے چل رہے تھے. تو یہ بھی مشیت ہے کہ اب وہ کیا اقبال کے خیال، اب یوں سمجھیے کہ اقبال نے ان وے مشیت کو کیا منظور ہے اس پورے سیناریو میں، وہ اقبال نے ایک طرح سے پیش کیا ہے، اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں. اور اقبال یعنی خدا فرشتوں کو یہ حکم دے رہا ہے، اور یہ لہجہ آپ دیکھیں، اٹھو اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. کاخ عمرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو پیلسز ہیں ایلیٹ کے رچ لوگوں کے، سپر رچ لوگوں کے جو ایوان ہیں، پیلس ہیں، انہیں ہلا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرومایا کو شاہین سے لڑا دو۔ کنجش کے فرومایا کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت ڈرنے والا، بہت گھبرانے والا چھوٹا سا ننا پرندہ ہے، ایک چھوٹے سے پرندوں کو شاہین سے لڑا دو۔ شاہین جو کہ بہت بہادر ہے، یہاں پر بھی شاہین جو ہے وہ اقبال کے جو، اقبال کا جو نظم مانوی ہے، اقبال کا جو اپنا فکری نظام ہے، اس میں جو شاہین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اقبال کے روایتی شاہین نہیں ہے۔ یہاں شاہین سے مراد، یعنی کوئی، میں تو یہاں اس کی جو انٹرپریٹیشن میں کرتا ہوں، میں وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ شعر یعنی 1933-1934 کا ہوگا، 1955 میں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا کہ ایک بہت چھوٹا سا ملک اور ایک بہت بڑی سپر پاور کی 19 سال وار رہی، ویت نام، 1955 سے 1975-74 تک۔ اور بلکہ امریکہ کا تو جو پرندہ ہے وہ، جو مطلب اس کا وہ ہے بھی فیلکن یا ایگل، آپ اسے وہ، اس کا ترجمہ بھی بہت سے لوگ شاہین کرتے ہیں۔ تو واقعتاً ایک بہت چھوٹا سا کمزور سا ملک جو ہے شاہین سے لڑ گیا، ان کو اتنا یقین تھا اپنے اوپر۔ تو یہ مشیت ہے، یہ مشیت ہے۔ پھر دوسری اس کی بہت بڑی اگزامپل افغان وار، کہ رشیا جو بہت بڑا مائٹ تھا اور افغانستان جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تو وہ لڑ گیا۔ تو یہ جو پورا، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو شاعر کا تخیل ہوتا ہے وہ بعض اوقات بہت آگے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا، اس کو وجدان کیا کیا کس کس چیز کا ہو رہا ہوتا ہے، وہ اسے بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، یعنی یقین ان کے اندر پیدا کرو، بلیف، اپنے اوپر بلیف پیدا کرو ان کا، ان کے اندر اتنا یقین ہو کہ وہ یہ کام کر جائیں۔ کنجش کے فرومایا کو شاہین سے لڑا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ یعنی ایک ایسا فیض آنے دو جس میں لوگوں کی، عام آدمی کی جو خواہش ہے اور عام آدمی کی جو اسٹرگل ہے، اس کو آگے آنے دو، اور اس کے راستے میں جو بہت پرانے پرانے فورٹس ہیں وہ ان کو توڑ دو، ان کو گرا دو۔ یعنی یہ جو سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک فیز آئے گا انسانی تاریخ کا، ایک پیریڈ آئے گا جس میں عام آدمی کا رول ہو جائے گا، یا یعنی اس طرح کا وہ انویژن کر رہے ہیں۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوش آئے گندم کو جلا دو۔ بہت خوبصورت شعر، یہ شعر بھی بہت زیادہ، یہ بہت مشہور شعر رہا ہے۔ دہقاں کہتے ہیں فارمر کو، وہ کھیت جس سے فارمر ہی کو روٹی نہیں مل پا رہی، اور وہ پورا سال گندم اگاتا ہے، اسی کو روٹی نہیں مل رہی، اس کھیت کے ایک ایک خوشہ گندم کو جلا دو۔ اور یہ کام بھی انسانوں کو نہیں دیا جا رہا، یہ کام خدا نے انسانوں کو نہیں دیا ہے، یہ کام خدا نے فرشتوں کے ذمے کیا ہے کہ میری مشیت اس سارے سیناریوں میں، میری قدرت اب حرکت میں آئے گی۔ میں نے دیکھ لیا، میں نے ان لوگوں کو ٹائم دیا، انہوں نے اپنے معاملات کی اصلاح نہیں کی، اب میری لاٹھی جو ہے وہ حرکت میں آئے گی۔ میں نے فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے، فرشتے میرے اذن سے یہ کام کریں گے، یہ خدا کی مشیت سے ہوگا، انسانوں کو یہ دعوت نہیں دی جا رہی کہ وہ یہ کام کریں۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ فرمان خدا کے ساتھ بریکٹ میں اقبال نے یہ لکھا ہے فرشتوں سے۔ اگر یہ فرشتوں سے کا لفظ نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم سب مطلب پھر نکل جائیں باہر، مطلب جلاؤ گھیراؤ کرنے کے لیے بس نکلیں باہر، مطلب تو یہ ہمیں نہیں کہا جا رہا، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشیت ایسا کر سکتی ہے۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوش آئے گندم کو جلا دو۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، میں ہر نظم کا، میرے خیال میں جو کلائمیکس جس مصرے یا جس شعر میں آتا ہے، میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، اس والے میں پچھلی نظم میں تھا وہ، جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی، اور اس سے پچھلی میں تھا احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات، ہے دل کے لیے موت मशीनों की। और इस वाली नज़म का जो क्लाइमेक्स है वो इस मिसरे के अंदर है, क्यों खालिक व मखलूक में हायल रहें पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। यानी ये जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं, ये जो इस वक्त रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं, चूँकि इन्होंने मेरा खौफ लोगों के अंदर नहीं पैदा किया और दीन की असल से इन्हें नहीं जोड़ा, और ये मुझसे कनेक्ट नहीं हुए बल्कि इनसे कनेक्ट हुए, तो इनको उठा दो। ये लोग इनसे कनेक्ट हुए, यानी उन उलमा का टाइम ख़त्म कर दो जो इंसानों को मुझसे नहीं जोड़ रहे, अपने आप से जोड़ रहे। बहुत सख्त, बहुत ही सख्त कमेंट है। क्यों खालिक व मखलूक में हायल रहें पर्दे, इसका मतलब है कि अल्लाह किसी पर्दे का कायल नहीं है, अल्लाह नहीं चाह रहा है कि कोई पर्दा खालिक व मखलूक में रहे। क्यों खालिक व मखलूक में हायल रहें पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। हकरा बसजूदे सनम रौ बतवाफे, बेहतर है चरागे हरम व देर बुझा दो। यानी इससे मुराद ये है कि खुदा के मानने वाले खुदा की सिर्फ़ और सिर्फ खुदा को सजदा करना जान गए, जानते हैं, और जो सनम यानी वो लोग जो खुदा को नहीं मानते वो भी बुतों के गिर्द सिर्फ तवाफ़ ही करते हैं। लेकिन एक ऐसे दीन का तसव्वुर जो पूरी पूरी ज़िंदगी का अहाता कर सके, ऐसे दीन का कोई तसव्वुर इनके पास नहीं है। यानी दीन को इन्होंने सजदे तक रिड्यूस कर दिया है, रिडक्शनिज़म जो है, यानी दीन को सजदे तक महदूद कर रखा है, दीन को तवाफ़ और सजदे तक महदूद किया हुआ है। तो ऐसा दीन जो है, मैंने तो ऐसा दीन नहीं दिया था, मेरा दीन तो पूरा मुकम्मल दीन था, पूरी की पूरी लाइफ पर छाने वाला और पूरी की पूरी लाइफ को अपने अहाते में लेने वाला दीन था। तो ये जो ये पीर यानी हकरा बसजूदे सनम रौ बतवाफ़े, बेहतर है चरागे हरम उदैर बुझा दो। यानी अगर ऐसी सिचुएशन है तो ठीक है, लोगों को यानी मुझे ऐसा रिलीजन नहीं चाहिए, यानी ये रिलीजन कम से कम इस रिलीजन को फेवर नहीं कर रहे। और फिर उसके बाद और एक बहुत सख्त शेर है, मैं नाखुश व बेजार हूँ मरमर की सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो। यानी यहाँ एक बात और महसूस होती है कि कैपिटलिज्म के असरात हरम को भी मुतासिर कर रहे हैं, और जो यानी उसमें जो मार्बल के टाइल्स हैं इकबाल, अच्छा ये आप सोचिए 1935 में तो लगे भी नहीं थे, मतलब या मतलब वो वाले नहीं लगे होंगे, कम से कम उमवी दौर के ही लगे हुए थे ना, मतलब या टर्किश पीरियड के होंगे। तो मैं नाखुश व बेजार हूँ मरमर की सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो। यानी ये ओवरऑल कहा गया कि भाई ये लोग अपनी मस्जिदों में मार्बल्स तो लगा लेते हैं, टाइल्स लगा लेते हैं, और सिर्फ सजदे को दीन समझते हैं, यानी सिर्फ नमाज को दीन समझते हैं, और सिर्फ हज और उम्रे को दीन समझते हैं, लेकिन इनकी इनका कैरेक्टर, इनकी लाइफ, इनकी सोसाइटी, इनकी सिविलाइजेशन, इनके मामलात, उसको देख के नहीं लगता कि मैं इनके मामलात की खूबसूरती को, यानी इनके मामलात की प्योरिटी, इनके मामलात की ट्रांसपेरेंसी मेरे खौफ की वजह से मुमकिन हुई है, मेरा खौफ तो है ही नहीं, लिहाजा मामला तो ठीक हुए ही नहीं है, कैरेक्टर तो वैसा बना ही नहीं है, तो ऐसा मुझे नहीं चाहिए। ये बड़ा सख्त जो है वो कमेंट है, मैं नाखुश व बेजार हूँ मरमर की सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो। तहजीब नवी कार गहे शीशा गरां है, आदाब जुनू शायर मशरिक़ को सिखा दो। तहजीब नवी, नई तहजीब, नई तहजीब से मुराद मगरबी तहजीब है। कार गहे शीशा गरां है, यानी ये शीशे की तरह नाजुक सी तहजीब है। शीशा बनाने वालों ने अगर कोई चीज़ बनाई हो, यानी वो लोग जिनके हाथ से जो चीज़ बनती है वो शीशे की तरह नाजुक बनती है, तो ये शीशे की तरह नाजुक सी तहजीब है। शीशे के अंदर चमक दमक होती है, शीशे के अंदर एक ग्लिटर होता है, लेकिन शीशा जो है वो बहुत फ्रेजाइल होता है, तो वो ग्लिटरिंग है, वो चमक दमक है, वो एक इम्प्रेसिव है, लेकिन वो नाजुक सी है। तहजीब नवी कारगहे تہذیب نبی کارگاہ شیشہ گراں ہے، آداب جنو شاعر مشرق کو سکھا دو، یعنی اس تہذیب کو چکنا چور کرنے کے لیے بس اتنا کافی ہے، شاعر مشرق سے وہ اپنے، یعنی وہ خدا جو ہے فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ جاؤ اقبال کو جو ہے وہ اس کی شاعری کے اندر ذرا ایک جوش اور جذبہ اس کو سکھاؤ، تاکہ وہ اپنے جوش سے جو ہے وہ لوگوں کو ایک اویئرنیس بھی دے، ایک اسپرٹ بھی پیدا کرے، اور وہ جو جوش جذبہ ان کے اندر پیدا ہوگا وہ خود ہی تہذیب جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. یعنی اس، یہ ایک تھوڑا سا اقبال بھی، ایک تھوڑا سا رومانٹسزم اقبال کے اندر ہے، ذرا سا وہ بات کرتے ہیں لیکن وہ ایک امید اور ایک جذبہ دلانے کے لیے کرتے ہیں. تو بہرحال یہ تھی آج کی نشست، بتائیے اس پہ اگر کوئی سوال یا کوئی بات.
یہ کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ کمیونزم کی برتھ جو ہے اس کا ریزن یہ تھا کہ ہم اسلام کا ٹرو کانٹینٹ ڈیلیور نہیں کر سکتے. اگر ہم اسلام کو صحیح طور پہ بتا پاتے تو کمیونزم کی تھاٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی.
اس کو یوں کر، اچھا نہیں، کمیونزم تو پھر بھی پیدا ہوتا. اصل میں بات یہ کہ کمیونزم اس وجہ سے پیدا نہیں ہوا کہ ہم اسلام کی صحیح تصور پیش نہیں کر سکے، بلکہ مسلم سوسائٹیز میں جو بھی دوسرے رجحانات تھے وہ نہ پیدا ہوتے اگر مسلم سوسائٹی کے پاس بڑی کلیئرٹی ہوتی اپنے اکنامک ماڈل کی، بہت کلیئرٹی ہوتی. یہ تو کمیونزم، تو یعنی کمیونزم کے اثرات کیپٹلزم پہ بھی پڑے ہیں. اس وقت آپ نے جو سوشل، یعنی آپ کو بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر جو کیپٹلزم جہاں پر ہے، اور وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. تو کیپٹلزم کا جو اوریجنل ماڈل تھا وہ ایسا نہیں تھا. جس کے پاس جتنا مال تھا اتنا وہ پریولیج تھا، اتنا وہ جو ہے ایکسس کر سکتا تھا فیسلٹیز کو. لیکن یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ایک دو لوگ ہیں جنہوں نے اسٹیٹ کی اکانومی میں ایکولی کانٹریبیوٹ نہیں کیا، لیکن دونوں جو ہیں وہ ہیلتھ کی فیسلٹی کو کے بینیفیشری ہیں اور ایکول بینیفیشری ہیں. تو کانٹریبیوٹر ایکول لیول کے نہیں ہیں لیکن بینیفیشری ایکول لیول کے ہیں ایجوکیشن میں اور ہیلتھ کے. تو یہ ایک الگ، یعنی یہ جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں یہ سوشلزم کے اثرات ہیں کیپٹلسٹ کہہ لیجئے اسٹیٹس کے اوپر. اور اس وقت کوئی بھی سوسائٹی یا کوئی بھی کمیونٹی یا کوئی بھی اسٹیٹ ایسی نہیں ہے جس کو ہم ان اٹس ٹرو سینس کمیونسٹ اسٹیٹ کہہ سکیں. اس وقت تو کوئی بھی نہیں ہے ایسی. لیکن جو سوشلسٹ اسٹیٹس ہیں، سوشلسٹ اسٹیٹس بھی اس وقت، سوشلسٹ اسٹیٹس کے اوپر کیپٹلزم کے اثرات ہوئے ہیں بہت زیادہ، اور کیپٹلسٹ اسٹیٹس نے سوشلزم کے کچھ اثرات قبول کیے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ریفائن ہوا ہے. اس کے اندر اور، یعنی وہ تو مسلسل ریفائنمنٹ کے پروسیس میں ہے نا. یہ تو الہامی ہدایت ہوتی ہے جو ایک پہلے دن سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو ڈیلیور کر دیتی ہے ہر لیول پر، پیس اور کہہ لیجئے ٹرنکویلٹی ڈیلیور کر دیتی ہے ڈے ون سے. یہ تو ایک الگ ہی ریاست ہوتی ہے. یہ والی ریاست تو مستقل ٹرائل اینڈ ایرر کے نتیجے میں ایوالو ہوتی ہیں نا یہ چیزیں. اب جو اسکینڈینیوین کنٹریز کا ماڈل ہے وہ اس کا ایک بہت زبردست امتزاج ہے. خود فن لینڈ کو آپ کو پتا ہے، فن لینڈ جو ہے کولڈ وار کے اندر، فن لینڈ دو بڑی طاقتوں یعنی ویسٹ اور یہ کیپٹلسٹ ویسٹ اور کمیونسٹ جو ہے وہ لیفٹ آپ کہہ لیں یا وہ جو ایسٹ کہہ لیں، ان کے بیچ میں بس وہ ایک چھوٹا سا ننا سا، ایک مطلب ایک پھونک مارے تو مر جائے، مطلب وہ اتنا چھوٹا سا ملک تھا لیکن اس نے سروائیو کیا ہے. اور فن لینڈ نے جو پھر فن لینڈ کی جو اکنامک ماڈل ہے اس کے اندر دونوں کہہ لیجئے جو کمیونزم کی اشتراکی علمیت ہے اس کے اثرات وہاں پر ہیں، اور سویڈن میں بھی اشتراکی علمیت کے اثرات ہیں. یہ تو بہت سارے ممالک ہیں جن پر اس کے اثرات ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو اس وقت دنیا میں جن کو ہم کمیونسٹ کنٹریز کہتے ہیں، یعنی جیسے ہم چائنا یا کیوبا یا نارتھ کوریا، تو وہ کوئی ایک ماڈل نہیں ہے، وہ سب بہت مختلف اس کے ویریشنز ہیں. انہوں نے اپنے اپنے حالات کے مطابق اس کو ایڈاپٹ کیا.
یہ سارے کام اللہ فرشتوں سے کرنے کو کہہ رہے ہیں، انسانوں سے نہیں. آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ پھر آپ نے مثال افغان اور ویتنام کی لی،
نہیں لیکن ہوا یہ کہ مشیت کو یہ منظور تھا، یعنی غیبی نصرت اور غیبی مدد آئی ان لوگوں کے ایمان، یعنی اس پورے سیناریو میں. اب ویتنامی تو مسلمان بھی نہیں ہے نا، ویتنامی تو ایک الگ ہی، لیکن ان کے اندر ان کے دل مضبوط کر دیے، उनको यकीन मिल गया और उन्होंने इतनी बड़ी फ़ौज के सामने टक्कर ले ली, इतनी बड़ी एम्पायर के सामने, यानी अमेरिका और वियतनाम जो 19 साल जंग चली है वियतनाम और अमेरिका की, इतनी बड़ी सुपर पावर जो, और उसके बाद फिर वो वहाँ से निकला है 1975 में, वो वहाँ से निकला है और बहुत रुसवा होकर निकला है। तो ये उसमें जो पॉइंट है वो ये कि इसमें जो बात कहने की कोशिश है वो ये कि मशीयत को क्या मंजूर है, ये एक अलग चीज़ है। यानी मशीयत अपने रास्ते खुद बनाएगी ना, किस तरह सिनेरियो बदलेगा, किस तरह सिचुएशन होगी, अल्लाह की कुदरत किस तरह चीज़ों को मुमकिन करेगी, वो एक अलग एस्पेक्ट है। जी,
अगर उसमें इंसानों से कह रहे होते तो एग्जैक्टली कम्युनिज्म हो जाता।
अच्छा एक बात, मैं इंसान अगर इंसानों से भी कह रहे हैं तो भी कम्युनिज्म नहीं होगा उसकी। हाँ मैं बताता हूँ, इसलिए कि कम्युनिज्म जो है वहाँ किसी भी किस्म की ऊपर से जो अथॉरिटी है उसको तस्लीम नहीं किया जाता। यानी मैं ही अपना मालिक खुद हूँ, मैं खुद ही अपना रब हूँ। जो 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 प्योर कम्युनिज्म है वो तो इस जगह पे खड़ा था, इसको भी रिलीजन को भी जबर की एक फॉर्म कहता है। यहाँ तो वो कह रहे हैं कि भाई ये वाला मुझे, ये संगे मरमर वाला नहीं चाहिए, मट्टी वाला चाहिए, लेकिन चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि खालिक और मखलूक के दरमियान पर्दे हायल नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है खालिक और मखलूक का ताल्लुक भी हो। तो अदरवाइज अगर हम कम्युनिज्म, अगर हम इसके ऊपर एक एतराज़ ये होता है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये पूरी जो फरमान खुदा है ये कम्युनिस्ट पर्सपेक्टिव है, लेकिन एक्चुअली मैं इसके बारे में कहता हूँ कि अगर लेनिन मुसलमान हो जाता तो जो बात आती है वो ही है। यानी अगर ये देखें, ये आपने देखा है कि मगरब में बहुत सारे लोग जब मुसलमान हुए तो वो कितने ज़बरदस्त मुसलमान हुए। इसी तरह खुद वहाँ पर जो आपकी सेंट्रल एशिया स्टेट्स, जब वहाँ लोग दीन की तरफ आए तो कैसा उन्हें तौफीक हुई। तो जब लोग पलट के आते हैं तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आते हैं। मतलब ये तो एक समझ लें कि इकबाल का अपना एक तखय्युल है कि उसमें उसने लेनिन को पहले कलमा पढ़वाया पहले शेर में, और उसके बाद से फिर सारी बातें लेनिन से करवानी शुरू की। तो वो एक इकबाल के अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीद और रिजाइत बहुत ज़्यादा है। मतलब इकबाल ये देख रहे थे कि ये कैपिटलिज्म गिर रहा है तो शायद ये सब भी इधर आएंगे, वहाँ कम्युनिज्म का मसला, तो सबकी तरफ उन्होंने नज़र लगाई हुई और मुसलमानों को बता रहे हैं कि तुम लोग जाग जाओ खुदा के लिए, अपने मामला सही कर लो ये सब। वो तो बहुत बड़ी जंप लगा रहे हैं। मैं एक बात आपसे कहूँ, कार्ल मार्क्स के लिए आपके दिल में मोहब्बत का जज्बा होना चाहिए, कार्ल मार्क्स के लिए भी आपके दिल में, और जो जो एक सच्चा कम्युनिस्ट है उसके लिए आपके दिल में हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बात होने चाहिए, क्योंकि वो एक मुकद्दस आदमी है जो बेलॉस होके किसी कॉज के लिए कुर्बान होना चाहता है। वो जबर के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाता है। बस पॉइंट ये है कि वो जबर के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठा रहा है वो अपने पर्सपेक्टिव में उठा रहा है। अगर आप उसको, अगर आपका जो पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादा कम्प्लीट है, वो एक फैज़ान समावी से मुनव्वर है, वो एक डिविनिटी के साथ कनेक्टेड है, तो आप असल में हम उनके उनके लिए हमारे दिल में एक रिगार्ड होना चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूँ, वो एक बड़ा आदमी है। मतलब कार्ल मार्क्स एक बड़ा आदमी था, या ये लोग भी बड़े आदमी थे। इनकी इनकी बहुत सारी चीज़ों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। लेनिन की तो खैर बहुत, लेनिन के साथ तो इख्तलाफ के बहुत सारे हवाले मौजूद हैं, वो मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा। यानी लेकिन तो ये भी जो पूरा बयानिया है, आप इसे ये नहीं कहें कि ये उनका नैरेटिव है। ये तो इकबाल ने मुस्लिम उम्मा को एक चीज़ जगाने के लिए इस्तेमाल किया है। इकबाल तो आपको शेक्सपियर के ऊपर इकबाल की एक नज़्म है, ज़बरदस्त नज़्म। इकबाल ने मेसोलिनी के ऊपर लिखा, इकबाल ने कार्ल मार्क्स के ऊपर लिखा, इकबाल ने किस 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 पर नहीं लिखा, मतलब कितनी सारी चीज़ों पर इकबाल की तो बहुत सारे मौजूदात हैं। तो ये इस्तेमाल किया इकबाल ने अपनी, उस इकबाल ने कहा अच्छा चलो भाई ये भी एक, इसको हम इधर ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं।
तो आपको नहीं लगता कि जो जितना इन्होंने लेनिन ने जो बयान दिया अल्लाह के हुजूर में, ये सारा जो है कैपिटलिज्म के खिलाफ दलाइल थे, फिर जहाँ अल्लाह सुभान तआला ने जो ऑर्डर जारी किए वो तो कम्युनिज्म के हाथ में आ गए? ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है।
एक बात समझना, हमें इस बात को जान के किसी दर्जे पर खुशी होनी चाहिए कि कैपिटलिज्म से जितनी बेजारी हमें होनी चाहिए उससे ज़्यादा कम्युनिज्म को रही है। हमें ये बात जानकर किसी दर्जे पर खुश होना चाहिए कि कैपिटलिज्म से बेजार होने और बेजार करने का जो मिजाज कम्युनिज्म को मिला था वो, और हमें इस बात पे अफसोस होना चाहिए कि हमारे अंदर वो मिजाज क्यों नहीं पैदा हुआ। हमने कैपिटलिज्म को उस तरह क्यों नहीं पहचाना जैसे कम्युनिज्म ने हमसे पहले पहचाना, एक बात तो मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात ये कि कैपिटलिज्म की जो का रद्द अगर कम्युनिज्म दे रहा है तो वो रद्द बुनियादी तौर पर, देखें वो रद्द गलत नहीं है, अब रद्द की बुनियाद गलत है, रद्द के नतीजे में जो उसने सोल्यूशन दिया उसमें हमें वो हमारा और उसका डिफर, लेकिन ये बात तो सही है कि कैपिटलिज्म हम, यानी इस्लाम कोई कैपिटलिज्म के फेवर में थोड़ी आया है, यानी इस्लाम का मकसद ये थोड़ी है कि कैपिटलिज्म की साइड ले, इस्लाम ना कैपिटलिज्म की साइड लेगा ना कम्युनिज्म की साइड लेगा, लेकिन अगर कैपिटलिज्म एक बड़ा मसला है और उसका रद्द कम्युनिज्म ने दिया है तो हमें अगर हम उसको एक नज़र देखें तो ये गलत नहीं होगा।
अच्छा, इसमें यह है कि इस्लाम में बताता है कि अपनी जो ख्वाहिशात है उस पर काबू रखना, जो कैपिटलिज्म है वो मतलब इंसान की जो ख्वाहिशात है उसको ज़रूरियात बनाता है कि तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश है तुम्हारी ज़रूरत है, तो मतलब ये इसकी बुनियाद है कि कैपिटलिज्म का
ये बहुत अहम बात, ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो आपकी ख्वाहिशात पर ज़रूरत का गुमान आपके अंदर पैदा करता है, आपको हर ख्वाहिश ज़रूरत लगती है, और इस्लाम जो है वो ये कहता है कि भाई अपनी ख्वाहिशात नफ्स को काबू करो, अपनी ख्वाहिशात हुब्ब माल जो है, क्या दीन हुब्ब माल जो है वो दीन और ईमान का बड़ा दुश्मन है या नहीं है? हुब्ब माल जो है वो बहुत बड़ा मसला है ना, तो हमारी पूरी दीनी रिवायत में हुब्ब माल एक बहुत बड़ा मसला है, और कैपिटलिज्म पैदा ही हुब्ब माल से होता है। कैपिटलिज्म जो है वो माल को बढ़ाने की कोशिशों के अंदर जो निज़ाम बनता है उसके नतीजे में वजूद में आता है। तो हमारा जो मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था कि हमारे इकोनॉमिक मॉडल की ये दो तीन बुनियादी बातें हैं जो उसमें से, तो ये बात बिल्कुल सही है। आप हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ और हज़रत उस्मान गनी बहुत मालदार लोग थे, लेकिन वो वेल्दी थे, कैपिटलिस्ट नहीं थे। क्यों नहीं थे कैपिटलिस्ट? कैपिटलिस्ट अगर वो अपने माल को बढ़ाने की फिक्र में उन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया हुआ था, माल को बढ़ाने की फिक्र और माल को बढ़ाना उनकी तिजारत का मकसद अपने माल को बढ़ाते रहना नहीं था। बहुत अहम बात है ये। हजरत उस्मान और हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ के बारे में आता है कि कई दफा ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना पूरा माल दे दिया, फिर अल्लाह ने दोबारा उनको माल से भर दिया। वो उनके पास माल आता था और पूरा पूरा माल वो राह में लगा देते थे, किसी नेक अल्लाह की राह में लगा देते थे। इतना तो आज आपको वो तो 1% प्रॉफिट का CSR एक्टिविटी में आप बमुश्किल लगाते हैं, वो भी उसका भी एक पूरा मैकेनिज्म होता है कि उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी आप ही हो। जी जी हाँ
सर, आपको ऐसे नहीं लगता कि मुस्लिम उम्मत जो है, सर हम तो नहीं है ना, पाकिस्तान तो नहीं है, अरब सब हम भाई, तो फिक्री तौर पर हम लोग बांझ से हो गए हैं, क्योंकि जब वो खला रह गया था जैसे ही कम्युनिज्म आया, यहाँ भी आपको पता है ईरान में भी हर जगह उसको फौरन एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन पूरी तहरीक के तौर पर अपने तौर पर आप भी लगे हुए बहुत एक बात से मोहब्बत करने वाले भी हैं, लेकिन कोई हमें ऐसी तहरीक ना नजर आ रही है और ना लग रहा है कि कोई डेवलप हो रही है जिसमें हमारे भी कोई सिस्टम को लेके चल रही है, हमारी सोच को भी लेके।
असल में दो तीन काम हमें करने होंगे, अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो ये इल्मी जो बांझपन है वो हमारा दूर नहीं होगा। उसमें सबसे पहला काम है कि हम मरूबियत से बाहर आएं। अगर हमने मरूबियत से बाहर नहीं निकले तो हमारा कोई इलाज मुमकिन नहीं है। हम इस वक्त बहुत ठीक ठाक मरूब हैं, हम अंग्रेज़ी ज़बान से मरूब हैं, हम अमरीका से वैसे ही मरूब हैं, हम सबसे मरूब हैं, और हम जो हैं वो हमें अपने आप पर वो इत्मीनान नहीं है, अपने ऊपर यकीन नहीं है। जो मरूबियत का मसला है ना, एक तो मरूबियत का मसला है, दूसरा मसला ये कि हम तदब्बुर नहीं करते, हम गौर व फिक्र नहीं करते। हाँ, तदब्बुर नहीं करते। तदब्बुर क्यों नहीं करते? उसमें हमारी ज़बान के मसाइल हैं। हमारी जो तदब्बुर होता है, अपनी ज़बान पर मजबूत टांगों से खड़े रहने वाला आदमी तदब्बुर करता है, दूसरे की ज़बान की बेसाखी लगा कर कोई तदब्बुर नहीं हो सकता। यानी अगर मेरी जो अपनी ज़बान है, अगर मेरी ज़बान खस्ता है और मैं दूसरी ज़बान की बेसाखियाँ लेके तदब्बुर की कोशिश करूँ, तदब्बुर नहीं हो सकता। तदब्बुर अपनी ज़बान में बहुत कवी टांगें चाहिए, अपनी ज़बान में रूट्स चाहिए, तो ये तदब्बुर। फिर तीसरी चीज़ है कि हम अपने ईमानी तनाजुर में तहकीक नहीं करते। अपने ईमानी तनाजुर में हम, यानी उसमें हम असलाफ के ख़जाने भी देखें और हम आज के अहद का तज़िया हम अपने ईमानी तनाजुर में करें, ये भी हम नहीं कर पाए। मतलब और बुनियादी वजह मरूब है ये वजह, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ऐसा, मतलब कोई भी नहीं है, यहाँ लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम, लेकिन कम से कम वो थॉट एग्जिस्ट करती है। इस पूरे मॉडल, इस पूरे कैपिटलिज्म डिस्कोर्स को क्वेश्चन करने वाली प्योर एकेडमिक मैनर में یہ ایکیومن اور یہ کیلیبر اور یہ اسٹرینتھ والے لوگ الحمدللہ اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں مسلم امہ کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ نہیں, الحمدللہ.